आठवीं क्लास चल रहा था, 31/3/1967 पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। अभी पतित देवी देवा आत्माएं तो नहीं कहेंगे, क्योंकि देवी देवताओं के पहले पतित शब्द लगाने से देवी देवताओं की इज्जत ही चली जाएगी, इसलिए ये नाम का फर्क पड़ गया है। अपन को हिंदू कहलाने लगे, कई बार तुम बच्चों को समझाया गया है अच्छी तरह से, तो भगवान के लिए जो समझाना है तो समझा करके फिर कहना है। अब याद किसको करना चाहिए? पतित पावन कौन है? क्योंकि पतितों को पावन बनाने वाला कृष्ण को तो नहीं कहेंगे, तो स्वयं 16 कला संपूर्ण देवता बनता है, और देवता को भगवान थोड़ी कहा जा सकता है। भगवान तो मनुष्य को देवता बनाने वाला है, तो सबसे ऊंचे से ऊंचा तो वो बाप है, जिस बाप से वर्षा मिलता है, सभी आत्माओं को वर्षा मिलता है, क्योंकि वो आत्माओं का बाप है ना। बाप को ही लिबरेटर कहा जाता है, लिबरेटर माने छुड़ाने वाला, काहे से छुड़ाने वाला है, देह के बंधन से छुड़ाने वाला, कि तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, इसलिए वो रास्ता भी बताता है कि आत्माओं के रहने का स्थान कहाँ है, तुम आत्माओं को कहाँ जाना है। तो आत्मलोक में जाना है, आत्म की स्थिति बनाएंगे तो आत्मलोक में जाएंगे। तो सोल वर्ल्ड कहते हैं आत्माओं का लोक, और ले जाने वाला है गाइड, रास्ता बताता है कहाँ ले जाता है, आत्माओं के धाम में ले जाता है। तो गाइड इंग्लिश में बोला, जरूर इसने ही बोला होगा। किसने है? कृष्ण की आत्मा ने ही बोला होगा, क्योंकि कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। बोला होगा कि जरूर वो गाइड है, लिबरेटर है, दुखों से लिबरेट करने वाला है, छुड़ाने वाला है, क्योंकि दुखों से आकर के सारी दुनिया को लिबरेट करे और दुखों से छुड़ा करके सुख की दुनिया में ले जाए, शांति में ले जाए। तो पहले शांति में ले जाते हैं, फिर सुखदान में भेज देते हैं। तो बताओ फिर याद किसको करना चाहिए? है शांति धाम में ले जाने वाले को याद करना चाहिए या सुख धाम में ले जाने वाले को याद करना चाहिए? हैं? किसको? सुख धाम में ले जाने वाले को याद करना चाहिए, शांति धाम में ले जाने वाले को याद नहीं करना चाहिए। बुखार आता है, सारे शरीर की नसें नसें टूटने लगती है, बहुत अशांति महसूस होती है। तो कहेंगे पहले शांति मिले, बुखार उतर जाता है तो शांति मिलती है, दुख से छूट जाते हैं, फिर है शांति ही पड़े रहेंगी क्या? है कुछ न कुछ खाने पीने की इच्छा होगी, इंद्रियों का सुख चाहिए, तो पहले शांति जरूरी, बाद में सुख। ऐसे तो होता नहीं कि बुखार आ रहा हो, नस नस टूट रही हो, अशांति बढ़ रही है शरीर में, और कोई कहे रसगुल्ला खा लो, मुख का स्वाद ले लो, तो कोई लेगा? हैं? क्यों? क्योंकि अशांति में है ना, अशांति में कुछ अच्छा नहीं लगता। तो पहले शांति देवा चाहिए, क्या शांति देने वाला चाहिए, और फिर सुख देवा चाहिए। तो ये अक्षर इंग्लिश में बोला गया कि दुख से लिबरेट करने वाला और सुखधाम में ले जाने वाला वो गाइड है, सारी दुनिया को लिबरेट करते हैं, सुख में ले जाते हैं, शांति में ले जाते हैं। पूछा किसको याद करना चाहिए? नानक को करना चाहिए, हनुमान को करना चाहिए, देवताओं को करना चाहिए, या इन सबसे जो ऊंचे थे ऊंचा है उसको याद करना चाहिए? क्योंकि गुरु नानक का भी चित्र दिखाते हैं, उंगली से इशारा ऊपर कर रहे हैं, तो गुरु नानक से भी कोई ऊंचा है ना? हनुमान भी किसकी पूजा करता है? कहते राम की पूजा करता है, और राम किसकी पूजा करते हैं? है शिव की पूजा करते हैं। तो देखो ऊंचते ऊंच को पकड़ना चाहिए ना, बिचौलियों को क्यों पकड़ना चाहिए? अभी पतित पावन को याद करने से मनुष्य पतित से पावन बनेंगे ना, वो पतितों को पावन बनाने वाला कहता है, कौन कहता है? है कौन कहता है? पतितों को पावन बनाने वाला कौन है? शिव। वो कहता है, उसको कहने के लिए मुख है, है? शिव बाप को मुख है, फिर कैसे कहेगा? कहने के लिए मुख ही नहीं है तो कहेगा कैसे? है? तो जिस तन में प्रवेश करते हैं उसको अपना मुख भी है, सभी इंद्रियां हैं। तो मुख से कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा। मना शिव को तो मन है नहीं, तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसके द्वारा कहते हैं मेरे मन में समा जा। ये अक्षर जरूर इस बच्चे ने भी कहा होगा। किस बच्चे ने है? ब्रह्मा बाबा ने भी कहा होगा। वो कहते हैं मन मनाभ, अर्थात सिर्फ माम एकम याद करो, अपन को आत्मा समझकर याद करो। क्योंकि अभी मौत सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। ये महाभारत महाभारी लड़ाई, वो ही लड़ाई सामने खड़ी है जिसका वर्णन महाभारत में है, और उस महाभारत का कनेक्शन गीता के साथ है। क्या पहले गीता ज्ञान, गीता ज्ञान सुनते हैं तो फिर भागवत होने लगती है। ज्ञान की जो मुरली सुनाते हैं उनके पीछे भागने लग पड़ते हैं। फिर जब भागने लग पड़ते हैं तो कोई कोई को छोड़ के भागते होंगे ना, उनको फिर क्रोध आता है, तो फिर महाभारत लड़ाई हो जाती है। तो ये कनेक्शन है, गीता का कनेक्शन भागवत से और भागवत का कनेक्शन महाभारत से। तो ऐसे ऐसे अच्छी तरह से समझाने से ये ऊंचे से ऊंचा बाप बुद्धि में बैठेगा। और इस समय में ही बुद्धि में बैठेगा क्या? सतयुग में तो है ही सत्व प्रधान सुखी दुनिया, त्रेता में भी सत्व सामान्य, कोई दुख तो नहीं शुरू हो गया। द्वैतवादी द्वापर में दुख शुरू होता है, लेकिन अति तो नहीं हो गई, और कलयुग में अति हो जाती है, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो अंत में मैं आता हूँ, तो फिर याद कर करके पवित्र बन करके जरूर बाप से जाकर मिलेगा। और कोई उपाय नहीं है, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। कौन बोला? शिव बोला उनको लिबरेटर कहा जाता है। ये क्यों बोला शिव ने? मुझको बोलना चाहिए मुझको लिबरेटर कहा जाता है, मुझको नहीं कहा। क्या कहा? उनको। क्यों? उनको कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि वो पार्ट भविष्य में चलने वाला है। उनको पतित पावन कहा जाता है, मुझको पतित पावन नहीं कहेंगे। क्यों? पतित शरीर के साथ पतित आत्मा बनती है कि बिना शरीर के पतित बनती है? आत्मा शरीर धारण करे तो पतित बनती है, शरीर धारण ही न करे तो पतित कैसे बनेगी? संग का रंग शरीर के द्वारा लगता है कि बिना शरीर के संग का रंग लगेगा? शरीर के द्वारा संग का रंग लगता है। तो बताया पतित पावन तब कहा जाता है जब वो निराकार साकार शरीर में प्रवेश करे और वो साकार शरीरधारी बाप समान संपन्न स्टेज धारण करे। पहले स्वयं पतित से पावन बने, फिर संग के रंग से दूसरों को पति से पावन बना सकते हैं। अच्छा, ये बात तो अभी बाबा ने ऐड किया, अब ये बच्चे रोज तो नहीं आती हैं, रोज ज्ञान सुनने आती नहीं है तो क्या होगा? ये जब जब आएगी तो सत्य के संग का रंग लगेगा, सत्य संग में आएगी तो रंग लगेगा, नहीं तो दुनिया में ही रहेगी तो दुनिया का संग का रंग लगेगा। दुनिया तो नीचे जा रही है तो दुनिया का संग का जो रंग लेगा वो भी कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा। क्या जब जब आवेगी या तो 15 रोज फिर आकर के फिर रुक जाएगी? किसी ने कहा टैली करेगी कि यहाँ अच्छा, यहाँ आने से अवस्था अच्छी होती है या बाहर की दुनिया में रहने से अवस्था अच्छी होती है, टैली करेगी? हाँ, जो पॉइंट लिखते हैं ना, यहाँ कोई है जो पॉइंट्स भी लिखते हैं? कौन लिखते हैं? तुम पॉइंट्स लिखती हो खास टॉपिक बनाने के लिए, किसी को कोई खास टॉपिक सुनाना है समझाना है तो तुम लिखती हो। किसी ने कहा नहीं बाबा, बाबा ने बोला फलानी फलानी टॉपिक के लिए बाबा ने समझाया, तो नई नई टॉपिक बनती जाएगी ना, पॉइंट या टॉपिक ये बात एक ही है। बच्ची ने भाषण किया, तुम्हारी माँ ने कभी वहां भाषण किया गीता पाठशाला में? माँ भाषण करती है? किसी ने कहा नहीं, पहले तो नहीं किया था, उस दिन किया था, खाली उस दिन किया था। किसी ने कहा मैंने इंग्लिश में बोला, माँ ने उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके बताया। ऐसी भी कोई कोई माताएं हैं, जैसे पॉइंट कर करके सुनाती हैं, इनवाइट करती हैं कि भाई हम इनवाइट करते हैं, थोड़ा बहुत समझा करके इनवाइट किया, पूरा भाषण नहीं किया। अब ये तो गांव छोटा है, उनमें तो सिंधी हैं ही थोड़े, अगर वहां जैसे हांगकांग है जापान में, जैसे बहुत वहां जाते हैं, लेकिन सिंधी बहुत सबसे जास्ती कहां है? पूछा जापान में, सिंगापुर में है या हांगकांग में? हांगकांग में, तो वहां कोई खुले वहां आकर के अच्छी तरह से समझे, और आजकल तो चित्र भी निकले हैं। ये देखो सीढ़ी का चित्र है, इसमें बताया हु इज गॉड ऑफ गीता, गीता का भगवान कौन। ये गीता का कौन भगवान है? वो भी ये चित्र है कि गीता का भगवान कौन है, वो अभी बन जाएंगे। 31-3-67 की वाणी का दूसरा पेज, तो वो चित्र अभी 2 रोज में बन करके तैयार हो जाएंगे, देरी नहीं लगती है। उनका वहां सावित्री ने किया था हांगकांग में गई थी, हाँ सावित्री ने मेहनत थोड़ी बहुत की थी, जिनका जिसने किया था रोजी ने, लक्ष्मण ने, उन्होंने पहले किया था। तो अभी जो ये चित्र निकलेंगे सीढ़ी के, अभी छपेंगे ना, टाइम लगेगा, पता नहीं कभी बनेंगे। है तो ठीक छपने की, लेकिन छपने में कोई देरी नहीं है, पर ये प्लान्स तो पास हो जावे तो छपने में कोई देरी नहीं लगती है। कोई भी चीज हो और क्विक मार्च वो करेंगे सर्विस में। कहा जाता है शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, और यहाँ फिर क्या होता है, शुभ कार्य में बहुत देरी लग जाती है। ये एक स्लोगन है बच्चों का, यहाँ के बच्चों का, बहुत देरी करनी चाहिए, ऐसे बुद्धि में बैठा हुआ है, देरी करते हैं। और बाप कहते हैं नहीं, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, झट बना देना चाहिए, क्योंकि चित्र बनेंगे तो बच्चे सर्विस पर लग जाएंगे, समझाने के लिए अच्छी अच्छी पॉइंट्स सहज ही मिल जाएगी। तो ये समझाएगा, देखो क्या समझाएगा, ये है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, सीढ़ी में कहां समझाएगा है? ये है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, कहां है? सीढ़ी के चित्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहां है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है? शिवलिंग कहां? द्वापर में शिवलिंग, द्वापर में ऊंचे ते ऊंचा शिवलिंग होता है क्या है? ऊंचे ते ऊंचा कौन से युग में होता है? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का जो टाइम है उसमें होता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो कौन है? देखो कलयुग के अंत में कौन है, तो उसे ऊंचे से ऊंचे भगवंत को ये बच्चा समझाएगा। अच्छा, उनसे ही ये वर्षा मिल सकता है। किसने बोला? किसके मुख से बोला? ब्रह्मा के मुख से बोला। किसने बोला? शिव ने बोला। उनसे ही वर्षा मिल सकता है। उनसे माने सीढ़ी की चित्र में किन से किस तरफ इशारा दिया जाए जो उनसे लागू होता हो। सीढ़ी के चित्र में कलयुग में नारायण कहाँ से आया है? है? खड़ा है, लेटा है। जो लेटा है उसके सर के नीचे गीता रखी हुई है, उसके लिए कहा उनसे ही ये वर्षा मिल सकता है। और वो ही अभी वर्षा देते हैं। कलयुग अंत और सतयुग के आज के संगम पर अभी वो ही वर्षा देते हैं। इसलिए ये लड़ाई सामने खड़ी है। क्या वर्षा देते हैं? बच्चों को विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। तो दुनिया में तो बच्चों की बादशाही तो है नहीं। भगवान पंडा बाप के बच्चे तो पांडव बैगर के रूप में घूम रहे हैं इस दुनिया में। राजा ही कहाँ है उनको? तो उनको राजा ही मिलेगी तब कि जब इस दुनिया में जो भी रावण संप्रदाय हैं उनका राज्य है, उनसे युद्ध होगा। कौन सा युद्ध है? वही महाभारी महाभारत लड़ाई। ऐसे नहीं है कि ऐसी लड़ाइयां बहुत होती रही है, नहीं। ऐसी महाभारी महाभारत लड़ाई तो पहले कभी 5000 साल में चारों युगों में हुई ही नहीं। ये कौन कहते हैं कि बहुत लड़ाइयां हुई हैं? एटमिक बॉम्ब की बहुत लड़ाइयां हुई हैं? हुई हैं क्या? 45 में एक बार छोटी छोटी बॉम्बियां छूटी थी, वो कोई बड़ी लड़ाई तो नहीं हुई। लड़ाई तो हुई है और उस लड़ाई में वर्णन भी इन एटमिक बॉम्ब का है। सन 1945 में जापान में और अमेरिका में जो युद्ध हुआ वो तो बहुत छोटी सी बम्बियां थी। कोई उन लड़ाइयों की बात नहीं है। कई कहते हैं ऐसी तो लड़ाइयां बहुत होती रहती हैं। अरे लड़ाइयां तो होती रहती हैं, पर एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाइयां थोड़ी ही होती रही। ये मिसाइल जिसको कहा जाता है, महाभारत की भाषा में मूसल निकले यादवों के पेट में से, वो कौन सा पेट? बुद्ध रूपी पेट में से ये मिसाइल से निकले। वो मिसाइल्स का युद्ध थोड़ा ही होता रहा। ये तो बहुत खौफनाक युद्ध है, देखते हो ना। ये लड़ाई से तो खाना खराब हो जाएगा सारी दुनिया का। क्या ऐसी लड़ाई छिड़ेगी एटॉमिक बॉम्ब्स की, लोग खाना पीना सब भूल जाएंगे। खाना खराब हो जाएगा। क्या सुनते हो, ऐसे कोई लड़ाई में कहते थे क्या कि हम एक बॉम्ब मारेंगे, यहाँ अमेरिका में बैठे बैठे मारेंगे और सारी चाइना उड़ जाएगी। इतना खौफनाक बम्ब। तो उन अमेरिका वालों को रिस्पॉन्ड करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। अभी कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है? नॉर्थ कोरिया अमेरिका वालों को चैलेंज दे रहा है ना। लड़ाइयों की बात तो बहुत बाबा के पास अभी लिखत में आती रहती है कि ऐसे ऐसे ये लड़ाइयां होती है। तो उन लड़ाई लड़ने वालों को समझाना तो चाहिए ना। लड़ाई तो होती है, पर ये लड़ाई देख करके, ये वंडरफुल लड़ाई है ना एटमिक बॉम्ब्स की लड़ाई, और ये तो इस दुनिया की अंतिम लड़ाई है। इसके बाद इस दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होगी, और इस लड़ाई के बाद क्या होगा? पुरानी दुनिया खलास और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। क्योंकि ये एटॉमिक बॉम्ब्स तो पुरानी दुनिया को खत्म करते हैं ना, है? पुरानी दुनिया माने लड़ाई झगड़ा करने वालों की दुनिया खत्म होगी, या जो पांडव लड़ते ही नहीं है उनकी दुनिया खत्म होगी? किसकी दुनिया खत्म होगी? जो लड़ने वाले हैं, लड़के हैं, उनकी दुनिया खत्म होगी। नई दुनिया के लिए भगवान गीता सुनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, परंतु ऐसे राजयोग सीखने वाले ऐसे बच्चे, सेंसिबल बच्चे सभी तो नहीं होते हैं, नहीं। रात दिन का फर्क हो जाता है। किसमें? योगियों में और भोगियों में। भोगी क्या करते हैं? क्या भोगते हैं? भोग भोगते हैं देह के, पंचभूतों से जो बनी हुई देह है ना, उस देह की इंद्रियों से सुख भोगते हैं। और योगी क्या करते हैं? जो देह के सुख, देह की इंद्रियों के जो सुख हैं, उनको बुद्धि से त्याग देते हैं और अति इंद्रिय सुख भोगते हैं। तो देखो, भोगियों में इस दुनिया के जो भोगी हैं उनमें और तुम योगी बच्चों में रात दिन का फर्क है। वो पंच भौतिक शरीर के भोग भोगने में लगे रहते हैं, और तुम भौतिकवादी दुनिया को बुद्धि से त्याग देते हो। तुम्हारे लिए ये भौतिकवादी दुनिया क्या हो जाती है? है? निद्रा। तुम भौतिकवादी दुनिया में नींद लेते हो, सो जाते हो। वो भौतिकवादी दुनिया में जागरण करते हैं, तुम कहाँ जागरण करते हो? आध्यात्मवादी दुनिया में जागरण करते हो। अधिमन अंदर, आत्मा मन अंदर, आत्मा आत्मा के अंदर 84 जन्मों का कैसे कैसे क्या क्या पार्ट भरा हुआ है, इन बातों में तुम सारी बुद्धि लगाते हो। तो देखो उनमें और तुम में कितना भारी फर्क है। वो भौतिकवादी और तुम आध्यात्मवादी, तो रात दिन का फर्क हो जाता। हाँ, कोई फर्स्ट क्लास योगी होते हैं। योगियों में कोई सब एक जैसे योगी नहीं, कोई फर्स्ट क्लास योगी, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, कोई फिर फोर्थ क्लास योगी होते हैं। भाई और भी कोई होते हैं फोर्थ के पीछे, फोर्थ क्लास के पीछे भी कोई और होते हैं। ये फिफ्थ क्लास भी होता है क्या? अच्छा, ये बच्ची अच्छी सर्विस करके आई है, फिर दिन प्रतिदिन जितना ये आती जाएगी और यहाँ नई नई पॉइंट धारण करेगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन तुम्हारी ये ज्ञान की पॉइंट्स और ही इजी होती जाएगी समझने में। तो ये सहज कोई भी समझ सकेगा, इसलिए इसको सहज ज्ञान और सहज योग कहा जाता है। क्या? सहज गीता ज्ञान, सहज राजयोग। तो ये सहज बात कोई भी समझ सकेगा कि ये तो राइट बात बोलते हैं, क्योंकि ये जो तुम ब्राह्मणों का झाड़ है, क्या तुम ब्राह्मणों का जो ये ब्राह्मणों का सृष्टि वृक्ष है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही तो जरूर जाएगा ना? वृक्ष बढ़ता है या खत्म हो जाता है? दिन प्रतिदिन बढ़ता है। तो पीछे हो करके जब ये 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 20, तो जितना जितना 20 से ज्यादा हो जास्ती होता जाएगा, तैसे तैसे तुम्हारी वृद्धि भी ऐसे होती रहेगी। परंतु इस झाड़ की वृद्धि आहिस्ते आहिस्ते होगी, ऐसे नहीं एकदम दुगना बढ़ जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि इस ब्राह्मणों के झाड़ को माया के तूफान बहुत लगते हैं, जबरदस्त तूफान लगता ही रहता है। तो तूफान तो कभी लगा कभी ना लगा, ऐसे होता है क्या? नहीं, तूफान तो लगते ही रहते हैं। ये तो हर कल्प संगम युग पर ये माया का तूफान है ही है, ये बहुतों को छनाई देते हैं। वृक्ष में, झाड़ में जो पत्ते होते हैं, तमो प्रधान पुराने पीले पड़ जाते हैं, तो क्या होता है? उनका जड़ जाते हैं, बहुत उनको छनाई देते हैं, गिर पड़ते हैं एकदम। या तो उनको वो फूल के पत्ते वत्ते सब गिर पड़ते हैं, कहेंगे बहुत कुछ गिर गया, ये गिराने वाला देवहन है ना बच्ची? उस देवहन में आकर के बहुत गिरते हैं, ये मरा। इस डाली का 100 मरा। देखो जब युद्ध होती है दो के बीच में तो ऐसे होता है ना, तुम तो अंजने हो, बड़े मुश्किल चलते हैं क्योंकि देह अभिमान है। बाकी नहीं तो बॉम्बे के लिए ये रतन बहुत अच्छे हैं। और वो सेंटर भी अच्छा है, भले कितना भी दूर हो तो भी कोई अर्जा नहीं है, और गरीब हो तो चलो उनको टिकट भी दे देना रेलवे से आने के लिए, या उनका कोई भी टिकट हो। अगर देखें कि नहीं नहीं चाहिए, हम अपना कर लेंगे, इनका आसार अच्छा है, तो हाँ बच्ची यहाँ कभी भी बैठो तो आंखें बंद करके कभी नहीं बैठो। कहाँ? बाबा के सत्संग में जब बैठो तो आंखें बंद करके कभी नहीं बैठो। क्यों? क्यों है? क्योंकि बाबा के सत्संग में आंखें बंद करके बैठेंगे तो बाबा की दृष्टि मिलेगी है, और बाबा में तो ऊंचा तो ऊंचा भगवंत, तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, महफूज हो जाएंगे। तो आंखें बंद करके नहीं बैठो। अगर आंखें बंद करके बैठते हैं तो वो हुए अंधे की औलाद। अंधे क्या? कौन अंधा था महाभारत में? किसको अंधा बताया? धृतराष्ट्र। क्या किया उसने जो नाम पढ़ा धृतराष्ट्र? धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति। जो राजाई थी और राजाई की जो भी धन संपत्ति थी वो किसकी राजाई थी? धृतराष्ट्र से पहले पांडु की राजा, पांडु की राजाई थी। राजा पांडु उसे थोड़े समय के लिए संभालने के लिए देखे गए थे, पूरा ही तो नहीं देखे गए थे। लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या किया? सारी धन संपत्ति, सारी राजाई हड़प करके बैठ गया। और जब पांडव ने शरीर, पांडवों के बाप पंडा ने शरीर छोड़ दिया तो पांडवों को कोई हिस्सा नहीं दिया, सुई की नोक के बराबर भी हम तुमको हिस्सा नहीं दें। तो देखो उनको कहेंगे अंधे की औलाद। अंधे, ये अंधे की औलाद अंधे बैठे हुए हैं सामने। जो आंखें बंद करके बैठते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें बाप दिखाई ही नहीं पड़ता, बाप दिखाई नहीं पड़ता तो बंद आंखें करके क्या करेंगे? कुंभकर्ण को ही याद करेंगे, वो तो आंखें नहीं खुलती हैं। तीसरी आंख, वो तीसरी आंख नहीं खुलती है, लेकिन ये आंख है भी बंद। जिन आंखों से संग का रंग ले सकते हैं वो आंखें भी बंद। भक्ति मार्ग में ऐसे होता है, याद करने बैठते हैं तो अक्सर करके क्या करते हैं, आंखें बंद कर ले। और वो ये होते हैं ना, यहां तो आंखें ऐसी हो भाई शेर जैसी, शेर जैसी आंखें सो जागता ही रहे जैसे। अच्छा, मीठे मीठे कृष्ण सी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 1/4/1967। रिकॉर्ड चला है, ये लड़ाई है दिए और तूफान की। निर्बल से लड़ाई हुई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे शिकीले बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी, भक्ति मार्ग का है ये गीत वास्तव में। फिर उस भक्ति मार्ग के गीत को ज्ञान में ट्रांसफर किया जाता है। क्या भक्ति मार्ग के गीतों को ज्ञान में ट्रांसफर किया जाता है? और तो कोई इन गीतों को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई ट्रांसफर करके बैठ करके सुनावे कि ये दीवा क्या है, जो दीवा निर्बल पड़ जाता है तूफान के सामने, परंतु हिम्मत से लड़ता रहता है। क्या हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो ये समझाना है कि दीवा माने कोई आत्मा है। क्या जो दुनिया के मुकाबले बहुत कमजोर है, और दुनिया में तो बड़े बड़े बलवान पड़े हुए हैं। और तूफान क्या है वो भी बताना है। तो दीवा तो बच्चे जानते हैं कि हमारी आत्मा ही दीवा है। जिस आत्मा रूपी दीवे की रोशनी उजियानी हुई है, क्या इसमें घृत कम हो गया है? तो दीवे में अगर घृत कम हो गया तो रोशनी भी धीमी पड़ जाती है। और अभी संगम में हमारा बाप आया हुआ है, उस दीवे को फिर से जगाने के लिए परंतु इसे उजियानी हुई रोशनी वाले दीवे को हिम्मत करके तूफान के बीच से जाना पड़ेगा। कहां से गुजर कर जाना पड़ेगा? तूफान के बीच से गुजर कर जाना पड़ेगा। इसलिए वो भक्ति मार्ग में लोग दीवा जगाते हैं। जब कोई मरता है तो उसके पीछे दीवा जगाते हैं कि ये सोझरे में जाए, इसके रास्ते में कोई अंधियारा ना हो, अज्ञान का अंधियारा ना हो जाए। अभी सतयुग में तो सोझरा ही सोझरा होगा, अंधियारा कहाँ की बात। इस कलयुग के अंत में बहुत तूफान आते हैं, और सबसे जास्ती तूफान कौन से स्टेट में आते हैं? है? आंध्र में। कहाँ आते हैं? आंध्र में बहुत तूफान आते हैं। किसका देश है? है? यथा राजा तथा प्रजा, अंधरों का देश है। नाम क्या पड़ा? आंध्र। ये एक ही प्रदेश है भारत का, जो समंदर के साथ सब प्रदेशों के मुकाबले जास्ती जुड़ा हुआ है। समंदर का किनारा कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है? 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 आंध्र। और आंध्र का जो राजा है वो भी अंधा, यथा राजा तथा प्रजा अंधा। वो कहानी होती है ना, अंधे और लंगड़े की कहानी। क्या कि नदी पार कैसे करें? विषय वैतरणी नदी है, इसको पार कैसे करें? वो लंगड़ा है, चल नहीं सकता, और वो अंधा है, देख नहीं सकता। तो क्या करते हैं? एक दूसरे का सहयोग ले लेते हैं। लंगड़ा अंधेरे के ऊपर सवार हो जाता है। लंगड़े को आंख तो है, क्या अपवित्रता का लंगड़ा है, रुद्रमाला का मणका है, तो उसको दिखाई तो अच्छा पड़ता है। ज्ञान की आंख तो है, तीसरा नेत्र तो है, रुद्रवत्स है ना, उनका मुखिया कौन? रुद्र, जिसके द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू होता है। लेकिन वो लंगड़ा है ना, क्या पवित्रता की बात नहीं है? विष पाई है या अमृत पाई है? विष पाई है। तो बच्चे भी और भी जितने रुद्रगण हैं वो सब ऐसे ही। तो वो लंगड़ा है, और वो आंध्रा का जो है राजा धृतराष्ट्र, ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? धृतराष्ट्र है। कैसे? है कैसे? नहीं, वो धृतराष्ट्र ने धृत माने धारण कर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति, सारी राजाई अपने हाथ में ले ली। यज्ञ के आदि में जो ओम मंडली थी उसकी सारी कंट्रोलिंग पीयू के हाथ में थी। क्या फिर क्या हुआ? उसकी तो लाश भी गुम कर दी। जो पीयू था, पंडा था, वो चल बसा। फिर उसके बच्चे वो राजा ही मिलनी चाहिए, लेकिन जिसने उस पंडा बाप को नहीं पहचाना, किसने हैं? ब्रह्मा बाबा ने नहीं पहचाना, तो अंधा हुआ ना। और उस अंधे ने जो ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी कंट्रोलिंग पावर थी, उस कंट्रोलिंग पावर को अपने हाथ में ले लिया। ओम मंडली खलास हो गई और कौन सी संस्था का नाम चला? ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ गया। तो किसका राज्य चल गया है? धृतराष्ट्र का राज्य चल गया। और धृतराष्ट्र की जो प्रजा है, उस प्रजा में मुख्य पैदा हुई, शास्त्रों में उसका नाम कुंती दिया है। क्या? पांडवों की माँ। वो पांडवों की माँ कौरवों के परिवार में रही या पांडवों के साथ गई? कौरवों के परिवार में रही। तो यहाँ कौन है? हैं? छोटी माँ। अंधे की औलाद है ना? अंधे की औलाद, अंधे, उसे भी बाप दिखाई पड़ता है क्या? हैं? उसको भी बाप नहीं दिखाई पड़ता। तो बताया, ये देहभान है धृतराष्ट्र में, और धृतराष्ट्र के बच्चों दुर्योधन दुशासन आदि में देहभान है, और देहभान के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तीसरी आंख जैसे है ही नहीं। तो देखो, आज की दुनिया में तो वो आंध्र प्रदेश स्थूल में दिखाया गया, स्थूल सागर के किनारे है। कहाँ की बात? बेहद में। ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेहद का आंध्र प्रदेश है, वो कौन सा है? अंधरों का प्रदेश है। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जो संगठन का स्थान है, वो क्या हुआ है? आंध्र प्रदेश हो गया। वो अंधरा और वो लंगड़ा। बताया, उन अंधरों को जगाने के लिए दीवा जलाया जाता है। दीवा माने आत्मज्योति, ताकि ये सोजरे हो जाए। सतयुग में तो सुयुद्रा होगा ही, वहां दियारा तो होता ही नहीं। सतयुग को कहा ही जाता है दिन, वहां तो ये दीवा आदि जलाने जगाने के धंधे होते ही नहीं। जो यहाँ भक्ति मार्ग में होते हैं कि भाई दीपावली आई, तो दीपावली में क्या करते हैं? दीवा जलाते हैं। कब जलाते हैं? लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी को सारा घर सोजरा सोजरा दिखाई दे, रोशनी ही रोशनी दिखाई दे। मने उस घर में जो भी रहने वाले हैं उनके आत्मा रूपी दीपक जगे हुए होने चाहिए, तो लक्ष्मी आएगी। अगर अंधेरा होगा तो लक्ष्मी नहीं आएगी। और साफ सुथरा भी होना चाहिए। दीपावली होती है तो पहले क्या करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। तो ये पंडा बाप के बच्चे पांडवों का घर है क्या? रुद्रमाला एडवांस पार्टी। इस एडवांस पार्टी में जो भी हैं भांति उनके दीवे कैसे जगे हुए होने चाहिए। सतयुग में तो दीवे सबके जगे ही रहते हैं, लेकिन स्पेशली जगाने की बात कहाँ की है? संगम की है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है, जो मरते हैं तो उनके पीछे पीछे दीवा जगाते हैं कि इनकी आत्मा को कहीं अंधेरा ना हो जाए। अब वो दीवा जगाने की तो बात ही नहीं, यहाँ कौन सा दीवा? ज्ञान का, आत्मा का दीपक जलाने की बात है। बत्ती जगाते हैं, दीवा जगाते हैं कि इसको रास्ते में अंधेरा ना हो जाए। क्यों तो कहते हैं जाते हैं स्वर्ग में, तो स्वर्ग में जाने वाले को अंधेरा काहेगा? स्वर्ग में जाएंगे तो तुमको अंधेरा थोड़ा ही लगेगा, नहीं तुम तो सोजरे में ही होंगे, बांधियारी की कोई बात ही नहीं। न वहाँ कोई भूख मरता है, न कोई मरता करता है, वो तो खुशी से वहाँ जाते हैं। वहाँ तो माल बहुत मिलते हैं सतयुग में, और यहाँ तो बहुत ही बातें दिखलाने के लिए कि बरोबर ये घोर अंधेरा और छी छी दुनिया है। आत्मा की ज्योति उजियानी पड़ी है और तुम जगाते हो, और कहते भी हैं कि बाप जगाने आते हैं, जो दीवे बुझ गए हैं ऐसे पड़े हैं जैसे बुझ गए। तुम्हारे तो खास करके जो भी ब्राह्मण वंशावली हैं उनमें तुम्हारे तो सबसे जास्ती दीवे बुझे हुए हैं। दुनिया में सबसे जास्ती आत्मा रूपी दीपक किसका बुझा हुआ है? तुम सूर्यवंशी बच्चों का दीपक सबसे जास्ती बुझा हुआ है, क्योंकि खास करके तुम्हारे लिए ही बाप आते हैं। क्या चंद्रवंशियों के लिए नहीं आते हैं? कहते हैं ब्रह्मवाक्य मुरली में क्या बोलते हैं, मैं तुमको सुनाता हूँ, ये चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा तो बीच में सुन लेता है। सुनाता किसके हूँ, समझाता किसको हूँ? है समझदार को समझाया जाता है या बेसमझ को समझाया जाता है? है समझदार को, तो मैं तुमको समझाता हूँ। ये तो बच्चा बुद्धि है, कृष्ण वाली आत्मा है, इसको समझाएंगे तो समझेगा थोड़ी, इसलिए मैं तुमको समझाता हूँ। तो बाप तुम्हारे लिए आए, तुमको खास, तुम ही पहले पहले कान से सुनते हो। क्या कहा है ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझती हैं? वो ये समझती हैं कि शिव ने जब ज्ञान सुनाया तो ब्रह्मा के कान सबसे पहले सुनते हैं। और बाबा यहाँ क्या कहते हैं? तुम ही पहले पहले कान से सुनते हो। तो ये तो दो बातें हो गई, ब्रह्मा के कान मुरली को पहले सुनते हैं या तुम्हारे कान पहले मुरली को सुनते हैं? भूल गए। हाँ, यज्ञ के आदि में प्यू वाली आत्मा में शिव बाप ने सुनाया ना गीता ज्ञान, अब तुम बच्चे भी थे वहाँ पहले पहले, तो तुमने पहले सुना या ब्रह्मा ने पहले सुना है? पहले किसने सुना? हम बच्चों ने सुना। और तुम बैठते हो सुनने के लिए, तुम कहते हो कि तुम्हारी आत्मा की बत्ती उजियानी हुई है, तो उस उजियानी हुई बत्ती को करंट कहां से मिलेगा? करंट मिलना चाहिए ना बच्चे, और ये बात तो बच्चे जान गए हैं कि करंट तो बाप से ही मिलेगी हैं? करंट किससे मिलेगी हैं? कैसे मिलेगी? अरे ज्योति जगेगी तो कौन से बाप से करंट मिलेगी? निराकार बाप से सीधा करंट मिलेगी? मिलेगी है? नहीं मिलेगी। वो निराकार बाप जब साकार में आवे तो साकार की इंद्रियों द्वारा, बोला ना आंखें खोल के बैठो, आंखें बंद करके बैठेंगे तो करंट मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जैसे ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, वो करंट लेती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जब याद में बैठते हो तो एक दूसरे का शरीर भी टच नहीं होना चाहिए, क्या अलग अलग होकर के बैठना है, देह से अंग न लगे ऐसे बैठना है, नहीं तो क्या होगा? एक आत्मा की बैटरी दूसरी आत्मा में ट्रांसफर होती रहेगी, फिर भरने से क्या फायदा? भरने से फायदा कब होगा? अभी भरने का समय है या खाली करने का समय है? हैं? अभी भरने का समय, तो अभी नए नए संबंध जोड़ने का समय नहीं है, अभी तो एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना है और सबसे तोड़ना है, नहीं तो क्या होगा? आत्मा जगेगी या उजियानी रह जाएगी है? आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाएगी या जागृत हो जाएगी? आत्मा क्षीण हो जाएगी। तो बताया कि अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योति उजियानी हुई है, तो उजियानी हुई आत्मा रूपी दीपक को कहां से करंट मिलेगा? तुम आपस में तो एक दूसरे से करंट पूरा मिलने वाला नहीं, क्योंकि सबकी आत्मा रूपी ज्योति उजियानी हुई है, अभी तो बाप आए हुए हैं। क्या? किसका बाप? आत्माओं का बाप आया हुआ है, लेकिन उसको अपना शरीर नहीं है। शरीर है, उसको शरीर नहीं है। तो शरीर जिसको है उसमें प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता? जिसका शरीर कभी इस संसार में नष्ट ही नहीं होता, सदा काल इस सृष्टि पर वो शरीरधारी रहता है, वो एक ही आत्मा है जिसका शरीर इस संसार में कभी नष्ट नहीं होता है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसको किसी ने जन्म लेते हुए भी नहीं देखा। तो ऐसे में प्रवेश करके मैं तुमको करंट देता हूं। सबसे जास्ती करंट कौन से अंग से लगता है? आप से लगता है। दुनिया में भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो पहला पहला करंट कहां से शुरू होता है? है? आंख से शुरू होता है। तो ये भी ऐसे ही है, बच्चे आंख बंद करके बैठते हैं तो बाबा कहते ये रहेंगे अंधे की औलाद अंधे, अभी बाप आया हुआ है, अभी तो एकदम आंखें खोल करके जागृत होके बैठना चाहिए। तो करंट कहां से मिलेगी? आंखें बंद करके बैठेंगे, अभी करंट मिलनी चाहिए ना बच्चे। तो बच्चे जान गए हैं करंट तो आत्माओं के बाप से ही मिलेगी, और आत्माओं का बाप बिना शरीर के करंट दे ही नहीं सकता। तो जो अविनाशी शरीरधारी है, इस मनुष्य सृष्टि का बीज, जो बीज कभी खलास ही नहीं होता, अविनाशी बीज है, षष्ठ रूपी रंगमंच पर एक ही है, तो उसमें प्रवेश करके तुमको करंट देता हूं। तो ये बच्चे जान गए हैं कि बाप से ही करंट मिलती है, और सब जो भी बच्चे हैं उनको करंट आत्मा को मिलती है। कभी देखते हो ना, यहाँ करंट कम हो जाती है तो डल हो जाते हैं, कोई दीपक है उसमें घृत कम हो जाता है याद का, तो दीपक की लौ कम हो जाती है, बत्तियां सभी डल हो जाती हैं। और फिर करंट जब जोर से भरती है तो दीपक की लौ फिर खड़ी हो जाती है, ऐसे होता है ना। तो तुम बच्चे तो जानते हो ये तो घोर अंधियारा है, इसको कहा ही जाता है घोर अंधियारा, घोर ब्रह्मा की रात। और इस ब्रह्मा की रात में कौन है ब्रह्मा? ज्ञान चंद्रमा। ज्ञान चंद्रमा कैसा हो गया? पूरा अंधेरा हो गया या पूरा रोशनी वाला है चंद्रमा? है? पूरा अंधेरा हो गया। अमावस्या के दिन चंद्रमा कैसा हो जाता है? है? उसका नाम है अमावस्या, अम्मा बसी आ करके उसके दिल में बस गई, चंद्रमा के दिल में, माने उस चंद्रमा रूपी बच्चे पर उस अम्मा का प्रभाव पड़ गया। नहीं समझ में आया? चंद्र ग्रहण होता है ना, एक तरफ सूर्य, बीच में धरती माता अम्मा, और दूसरी तरफ उपग्रह है अम्मा का बच्चा चंद्रमा। तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी का परछाया प्रभाव चंद्रमा पर पड़ जाता है और चंद्रमा को पूरा ढक लेता है। तो चंद्रमा किससे प्रभावित हो गया? है? अम्मा से प्रभावित हो गया। अम्मा बसी आकर के जिसके दिल में पूरा पूरा बस गई, पूरा ही प्रभावित हो गया अम्मा से, तो वो हुआ कृष्ण बच्चा, जिसे कहते हैं कृष्ण चंद्र, चंद्रमा है ना, उस चंद्रमा को कौन से धर्म वाले ज्यादा मानते हैं? हैं? मुसलमान धर्म के लोग चंद्रमा को जास्ती मानते हैं। कैसे चंद्रमा को? संपूर्ण चंद्रमा को या अधूरे चंद्रमा को? अधूरे चंद्रमा को मानते हैं। तो फिर जब करंट जोर से भरती है, डायरेक्ट सूर्य की रोशनी पड़ती है चंद्रमा के ऊपर, तो ये बत्ती खड़ी हो जाती है। पूरा चंद्रमा बत्ती आत्मा की रोशनी खड़ी हो जाती है। तो तुम बच्चे जानते हो कि ये तो घोर अंधियारा है, क्या ये दुनिया कलयुग के अंत में क्या है? सारी दुनिया भौतिकवादी बन गई, पंचभूतों में बुद्धि रमी हुई है सबकी, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बने हुए ये जो शरीर हैं, इन शरीरों के आलोड़न में, पांच तत्वों के मनन चिंतन मंथन में सारी दुनिया लगी हुई है। शरीर के पोषण में लगी हुई है, लेकिन शरीर में जो अविनाशी आत्मा है उसके बारे में किसी को जानकारी है ही नहीं। तो इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। इसी बात के लिए गीता में बोला है क्या, योगी लोग जागते हैं, योगी लोग जहाँ जागते हैं वो दुनिया वालों के लिए रात है। किसमें जागते हैं? आध्यात्मवाद में योगी लोग जागते हैं कि आत्मा के अंदर क्या है। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा, आत्मा के अंदर क्या है इस बात का मनन चिंतन मंथन करने में योगी लोग जागरण करते हैं। और दुनिया वाले उस रात्रि में सोते हैं। दुनिया वालों के लिए वो अध्यात्मवाद रात है, और तुम्हारे लिए तुम जागरण करते हो, तुम्हारे लिए वो अध्यात्मवाद दिन है। और जिस भौतिकवाद में तुम सोते हो, क्या तुम्हारे लिए भौतिकवाद रात है और उनके लिए वो दिन है, वो भौतिकवाद में जागरण कर। गीता में श्लोक आया ना, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। तो अभी तुम बच्चे करंट ले रहे हो, कैसे करंट ले रहे हो? आत्माओं के बाप से करंट ले रहे हो। दुनिया भी सूर्य से रोशनी लेती है, है? वो कौन सा देश है जहां सूर्य की रोशनी सबसे जास्ती, और वो कौन से देश हैं जहां सूर्य बहुत कम निकलता है? जो अंग्रेजों के देश हैं वहां सूरज बहुत कम निकलता है, क्या विदेशी लोग ज्ञान सूर्य की रोशनी ज्यादा लेते हैं या स्वदेशी भारत के लोग ज्ञान सूर्य की रोशनी ज्यादा लेते हैं? कौन लेता है, हैं? भारतवासी जो ज्ञान सूर्य है शिव, उससे ज्ञान की रोशनी जास्ती लेते हैं। और विदेशी कम ज्ञान उठाते हैं, तो उनके कम जन्म होते हैं और हमारे इस दुनिया में ज्यादा जन्म होते हैं। हम ज्यादा ज्ञान उठाते हैं, ज्ञान की रोशनी ज्यादा लेते हैं सूर्य से, तो हम ज्यादा सुखी रहते हैं। ज्ञान से सुख होता है या दुख है? ज्ञान से होता है सुख, और अज्ञान से होता है दुख। ज्ञान देने वाला एक और अज्ञान देने वाले अनेक धर्म पिता हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये अज्ञान देते हैं या ज्ञान देते हैं? वो अज्ञान रात के असुर हैं। अब तुमको कौन मिला है? ज्ञान सूर्य मिला है। तो ज्ञान सूर्य से तुम करंट लेने के लिए आंखें खोल करके बैठेंगे तो तुम्हारी आत्मा को पूरा पूरा करंट मिलेगा। जैसे जनरेटर होता है ना, जिसमें से करंट निकलता है, जोर से बिजली निकलती है, तैयार होती है, और बैटरी होती है। बैटरी का कनेक्शन तार से जोड़ेंगे तभी तो बैटरी चार्ज होगी, है? और कनेक्शन कट कर दिया, तार हटा दिया, तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो ऐसे ही ये जो इंद्रियां हैं, ये तार का काम करती है। क्या तारों में भी भांति भांति के तार होते हैं? एक एल्युमिनियम का तार होता है, एक तांबे का तार होता है। ज्यादा करंट कौन सा खींचता है? तांबे का तार बड़ी तेजी से करंट खींचता है। तो ऐसे ही ये आंख जो है ना, वो बहुत तीखा करंट लेती है। और इंद्रियां इतना तीखा करंट नहीं लेती, देती। क्या आंखों से करंट लिया भी जाता है, आंखों से करंट जाता भी है, छीण भी होता है। तो तुम अभी करंट ले रहे हो, कहां से ले रहे हो? बड़े से बड़े मशीनरी से तुम करंट ले रहे हो। क्या जो करंट को स्टोर करने वाली बड़े से बड़ी मशीनरी है, उससे तुम रोशनी ले रहे हो? अभी देखो, तुम जो रोशनी लेते हो वो कितनी बड़ी मशीन होनी चाहिए? अंग्रेजी में इसको कहते हैं जंटर, जॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं? जॉइंट, इसको जॉइंट कहते हैं। बड़ी बड़ी एकदम, देखो बंबई में कितने आदमी रहते हैं, कितने शहर में वो कारखाने वगैरह लगे हुए हैं, उन कारखानों आदि को कितनी करंट चाहिए बंबई में? तो मशीनरी भी कितनी बड़ी होती होगी। और ये जो बाप है, ये जो बाप है, उस बाप के अलावा बाकी सबकी आत्माएं तो उजियानी पड़ी हैं। ये सारी दुनिया की आत्माओं की रोशनी धीमी पड़ी हुई है। तो देखो, इस दुनिया के 500 700 करोड़ मनुष्यों को सबको करंट देनी है, अभी करंट मिलनी है, कभी संघ में करंट मिले बगैर तो कोई वापस आत्मलोक में जा ही नहीं सकेंगे। देवान में भारी हो जाएंगे कि हल्के हो जाएंगे? भारी हो जाएंगे तो ऊपर उड़ेगी आत्मा है? हाँ, आत्माभिमानी बनेंगे, देवान खत्म होगा तो आत्मा आराम से ऊपर उड़ती ही जाएगी। तो करंट नहीं है, जो करंट सिक्योर नहीं करेंगी, मान लो आंखें बंद करके बैठी रहेंगी तो उनको फिर सजाएं मिलेंगी। क्या उनको फिर सजाएं मिलेंगी? ये सब होता रहेगा। तो मूल बात है, बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब बुद्धि का योग बाप से तो लगाओ। कैसे लगाओ? देह अभिमानी बनकर नहीं। क्या देह अभिमानी बनेंगे तो देह और देह की इंद्रियां हरकत में आ जाएंगी, ऐसे नहीं। क्या करो अपन को? क्या समझो? आत्मा समझो। देह और देह की इंद्रियों की हरकत में ना आओ, चंचलता में ना आओ। देह और देह की इंद्रियों की चंचलता में आकर के बाप से मिलेंगे तो करंट मिलेगी नहीं। अब बुद्धि का योग बाप से लगाना है ना, तो देही अभिमानी बनो। बाप आते हैं ना, कितना बड़ा है, सारी दुनिया के पतितों को पावन करने वाला सुप्रीम आत्मा है। क्या कैसी आत्मा? ऐसी सुप्रीम आत्मा जो कभी खाली होती ही नहीं। शास्त्रों में क्या श्लोक है इसके बारे में? है पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम् युदुच्यते। उसमें से सारा ही निकाल लो तो भी सारा ही पूर्ण ही बचेगा। तो सारी दुनिया के पतितों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप है। ये सुप्रीम आत्मा क्यों आती है इस सृष्टि में? इस सृष्टि में क्यों आती है? क्योंकि इस सृष्टि में आत्माएं इंद्रियों से सुख भोगते भोगते बिल्कुल क्षीण हो जाती है, तो उन क्षीण हुई आत्माओं को करंट देने के लिए बाप आते हैं। करंट देने के लिए बाप आते हैं तो क्या करेंगे? आएंगे और करंट देना शुरू कर देंगे? हैं? लेना भी है बाप को? करंट लेना है किसको? लेना है बच्चों को लेना है। जानेंगे कैसे बिंदी बाप कौन सा है? ये बिंदी 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 सारे बिंदी, कहाँ बिंदी बाप आया हुआ है? किससे ले? किस शरीर में आता है? कैसे पता चले? है हाँ। जानकारी देते हैं ना, और वो इतनी सच्ची जानकारी देते हैं कि साहब के दिल से लगती है, अगर सुने तो क्या सुनते ही नहीं है। ऐसे भौतिकवादी दुनिया में रच पच जाते हैं कि ईश्वर जो ज्ञान सुनाता है उस ज्ञान की बातों को कान से सुनते भी नहीं, सुने तो कुछ बुद्धि में बैठे। पहले होता है सुनना, फिर होता है, सुनने के बाद मानना कि हाँ बात सही है, फिर समझना, गहराई से उस बात को विस्तार से समझना, इतना समझ लेना कि हम दूसरों को भी समझा सकें। दो तीन बातें हो गई, सुनना, सुनने के बाद मानना, मानने के बाद समझना, और समझने के बाद दूसरों को समझाना, और फिर जितना जितना हम दूसरों को समझाते जाएंगे, सुनाते जाएंगे, हमारा अंदर अंदर बढ़ेगा। क्या ये धन ऐसा है कि देने से कभी कम कम नहीं होता, वो दुनियावी धन देने से कम होगा और ये धन बढ़ता ही जाता है। तो देते जाएं, क्या होगा, हमारे अंदर फुल हो जाएगा, और जब फुल हो जाएगा तो फिर है प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने की बात। क्या पूरी बात जब समझ में आ जाती है तो उसको धारण करना लाजमी हो जाता है। बात समझ में नहीं आती तो आदमी धारण करने से पीछे हट जाता है। तो मूल बात है, जो बच्चों को बाप समझाते हैं कि बच्चे अब बुद्धि का योग किससे लगाओ, है बुद्धि का योग किससे लगाओ, बाप से लगाओ। कौन से बाप से लगाएं? एक तो जन्म जन्मांतर के बाप हुए, 84 जन्मों में 84 बाप, उनमें कौन से बाप से बुद्धि योग लगाएं? दूसरा, सारी मनुष्य सृष्टि का कोई पहला बाप, वो भी मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप। तीसरा, आत्माओं का बाप, मनुष्य तो साकार होता है, साकार मनुष्यों का बाप भी साकार, और आत्मा निराकार, निराकार आत्माओं का बाप भी निराकार, वो भी बेहद का। तो कौन से बाप को याद करना है, कौन से बाप से बुद्धि योग लगाना है, हैं? आत्माओं के बाप से नहीं, वो तो खुद ही खाली हुआ पड़ा है। सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है उसकी आत्मा सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि बन जाती है। क्या इसलिए उसकी यादगार कलयुग के अंत में ग्रेनाइट पत्थर का लिंग बनाते हैं ना। कलयुग के अंत में कैसा बन जाता, जो सबसे कड़ा पत्थर होता है, ग्रेनाइट पत्थर, और छोटा मोटा पत्थर नहीं, ग्रेनाइट पत्थर का बड़े से बड़ा और गहरे से गहरा पहाड़, माउंट आबू जैसा बन जाता है। वो माउंट आबू का एक ही पहाड़ है जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। दुनिया में बड़े बड़े भूकंप आएंगे क्या, परमात्मा प्रत्यक्षता बांब भी फूट जाए, बेहद का बांब, परमात्मा प्रत्यक्षता बांब, बड़े से बड़ा बांब ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा है, ग्लानी का बांब। ऐसी ग्लानी की बदबू उसमें निकलेगी कि लोग सूंघते ही खलास हो जाएंगे। ऐसा बड़ा बांब फटेगा तो भी वो पहाड़ हिलने वाला नहीं है। बड़े बड़े भूकंप आते हैं जब बांब फटते हैं धरणी पर, तो बांब के फटने से इतनी जोर से धरणी हिलती है कि बड़े बड़े भूकंप फूट पड़ते हैं, ज्वालामुखी आग के विस्फोट होते हैं पृथ्वी के अंदर से, और धरणी जोर से हिलती है, उससे दुनिया के सारे मकान टूट पड़ते हैं। और मनुष्य कहाँ रहते हैं, मकानों में रहते हैं। आजकल तो 100-100 200-200 मार के ऊंचे मकान बने हुए हैं। शहरों में कितने लोग रहते, सब मर पड़ेंगे, भारी विनाश होगा भूकंप से। लेकिन माउंट आबू पहाड़ पर जो रहने वाले तपस्या करने वाले होंगे वो अंत तक देखते रहेंगे विनाश को। तो बताया ये है तपस्या भूमि, उसकी यादगार है शिवलिंग। कैसा लिंग है, कल्याणकारी लिंग, भले ग्रेनाइट पत्थर का है। कलयुग के अंत में कोई भी यादगार मंदिर में देखो जाकर शिवलिंग को, शिवालय में काहे का बना हुआ है, ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। द्वापर में भी बनाते थे, ताम्रलिंग बनाते थे, रजो प्रधानता की यादगार। चांदी के भी बनाते थे, सतो सामान्य स्टेज थी चांदी का, सोने का भी बनाते थे, जिसकी यादगार सतो प्रधान स्टेज की यादगार थी। अब कैसा बन गया, पत्थर का बन गया, पत्थर बुद्धि बन गया। बाप कितना भी समझाते हैं अमृत छोड़ बिख काहे को खावे, प्यार से समझाते हैं या कड़कों के समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, लेकिन वो समझने वाला नहीं है। कब तक नहीं समझेगा है, कब तक नहीं समझेगा, जब तक 500-700 करोड़वा बच्चा प्रजापिता का लास्ट मनुष्य रूपी बच्चा भी उसके संग के रंग से पावन नहीं बन जाएगा। तब तक उसे संग करना ही करना है। कोई भी इंद्रिय से
संग करने के लिए गुरु बनाया
है,
संग कभी कभी उनको निमित्त बनाते हो सीमित तो हुआ
सीमित क्या
शंकर ने उनको निमित्त बनाया था
निमित्त बनाए किस बात के निमित्त बनाए
उनको उनके द्वारा
पतितों को
पावन
बनाने के लिए निमित्त बनाए और ठीक है निमित्त बना है लेकिन ये भी तो बताते हैं क्या अमृत छोड़ विख काहे को खावे विख माने विख की परिभाषा क्या है
अपवित्र
है
अपवित्र
क्या
अपवित्र
विष की परिभाषा है पराई स्त्री पर पुरुष को विष कहा जाता है पतित बनना है वो तो पति दुनिया का कायदा है मुरली में बोला परंतु एक के साथ पतित बने अनेकों के साथ पतित बनना ये बेकायदे है श्रीमत के बरखिलाफ है ऐसे करेंगे तो आत्मा कमजोर बनेगी या पावरफुल बनेगी है? कमजोर बनेगी तो वो कमजोरी राम वाली आत्मा में नहीं आएगी है? और आत्मा में आएगी तो आत्मा के द्वारा शरीर में नहीं आएगी है? आएगी इसलिए बोला शरीर भल कैसा भी हो लेकिन आत्मा पावरफुल होना चाहिए जगन्नाथ का शरीर देखो कैसा शरीर रूपी रथ लक्कड़ बुद्धि कितने लोग चलाते हैं जगन्नाथ का रथ कितने लोग धक्का देके चलाते हैं है? सैकड़ों लोग धक्का लगाते हैं तब चलता है क्यों है ऐसा ये शरीर में रूपी रथ में ऐसी कमजोरी क्यों आती है कि सैकड़ों को धक्का लगाना पड़ता है तब चलता है नहीं तो दौड़ेगा ही नहीं ईश्वरीय सेवा में है श्रीमद भाई आप तो उस्ताद हैं जैन ग्रंथों में जैसे हिंदुओं में चार युग माने हैं षष्ठी के चार भागों में षष्ठी बटी हुई है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ऐसे जैनियों में पूरा कल्प जो है वो छह हिस्सों में बांटा है उसमें से एक हिस्सा सनत कुमार कल्प कहा जाता है क्या क्या नाम दिया सनत कुमार कल्प और उसमें ये बताया है कि सनत कुमार कल्प में जितना दुख सहन करना पड़ता है उतना और कोई कल्प में नहीं सहन करना पड़ता और हिंदुओं में वो याद करके जब कथा सुनाते हैं राम की तो पंडित जी भी सुनाने वाले जार जार रोते हैं और सुनने वाले भी जार जार रोते हैं और मुरली में भी बोल दिया ब्रह्म वाक्य भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया अरे भगवान भी रोता है क्या है? भगवान दूसरों को सिखाने वाला कि संगम युग मौजों का युग है क्या भगवान क्या सिखाता है संगम युग मौजों का युग है कि ये सिखाता है कि रोने का युग है, है? जो भगवान स्वयं सिखाता है कि संगम युग मौजों का युग है, वो भगवान कैसे रोएगा? हाँ, जिस तनधारी में आता है उसकी बात बताई, उसको जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। तो रामायण की कथा सुनते जाते हैं, सुनाने वाले भी रोते जाते हैं और सुनने वाले भी रोते जाते हैं। तो राम क्या रावण से लड़ाई लड़ते लड़ते रोते रोते लड़ाई लड़ते रहे होंगे क्या? है हिम्मत से लड़ाई लड़ी होगी या रो रो के लड़ाई लड़ी होगी? है उन्हें दुख भासता है? है नहीं भासता। माना उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि शरीर कैसा भी हो जाए लेकिन हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। वो दुख का अनुभव करते ही नहीं। जो संसर्ग में संपर्क में संबंध में आने वाली आत्माएं हैं वो ऐसा भावना से समझती हैं कि इनको बड़ा दुख है।
पतित्वों को पावन बनने का निमित्त तो कैसे होगा भगवान?
पहले खुद का कल्याण करना चाहिए कि पहले दूसरों का कल्याण सोचना चाहिए?
पहले अपना कल्याण।
स्वकल्याण में विश्व कल्याण भरा हुआ है कि अपना कल्याण किया ही नहीं और दूसरों का कल्याण कर लेंगे? अपने बीवी बाल बच्चे भूखों मरते रहे और दूसरों को दान धर्म करते रहे, ये होशियारी है?
पहले अपना कल्याण करके अगर पावन बन जाएंगे तो पतितों को फिर पावन नहीं बना पाएंगे, कांटे होंगे तभी तो कांटे करेंगे।
खुद पावन बन जाए तो
फिर पतितों को पावन नहीं बनाएंगे ना, खुद पहले पावन बन जाएगा तो बाकी पतितों को पावन कैसे बना देगा? कांटों को निकाल के लिए कांटा से
पावन बनाने वाला हल्का फुल्का फूल होगा या कांटा होगा?
नहीं कांटा होगा।
वो तो बबूल नाथ है, बबूल का कांटा बड़ा लंबा होता है ना, तो बबूल के कांटे की मुआफिक है।
कलयुग में तो बड़े से बड़े कांटा हो जाते
हैं।
कलयुग में तो
बड़े से बड़ा कांटा हो जाता है। हाँ, उससे बड़ा कांटा तो कोई होता ही नहीं। दुनिया में ऐसी कोई आत्मा होती नहीं जो इतने जास्ती लोगों को हाय 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 करके शरीर छुड़वाए, कोई होती है? थे? तो बड़े से बड़ा कांटा हुआ, बड़े से बड़ा रावण हुआ, रावे थे लोकानीति रावण, जो लोगों को रुलाता है सो रावण, कांटा लगता है का है मुंह से रोना आता है। तो पहले अपना उद्धार फिर दूसरों का उद्धार। लेकिन आर्ट भरा हुआ है आत्मा में, उद्धार मूर्त उत हर, दोनों शब्दों को मिलाओ तो होनेगा उद्धार मूर्त। जो बीज होता है वो उद्धार मूर्त होता है, सारे झाड़ को बीज खींच करके ऊपर तक लास्ट स्टेज तक ले जाता है और फिर बीज बन करके फिर तैयार, तो उसे कहेंगे उद्धार मूर्त। ऊपर हरण करके ऊंची स्टेज में ले जाता है, और जड़ों को कहते हैं आधार मूर्त। जो जड़ें हैं, सारा पेड़ किसके आधार पर खड़ा है? जड़ों के आधार पर खड़ा है। तो जड़ों के आधार पर जो पेड़ खड़ा हुआ है वो आधार मूर्त हो गए। वो जड़ें कौन सी हैं? वो जड़ें वही नारायण वाली आत्माएं हैं जो सतयुग में नंबर वार नारायण बनते हैं, नौ नारायण। नौ नारायणों के आधार पर ये सारी दुनिया टिकी हुई रहती है, सभी धर्म वाले टिके रहते हैं। उन नौ नारायणों में नंबर वार में ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं आधार लेते हैं, प्रवेश करते हैं। तो वो सभी धर्म टिके रहते हैं उन जड़ों के ऊपर। जड़ माने माता, उस माता को भी बनाने वाला बीज पिता। तो बताया जब करंट नहीं लेती है आत्माएं तो क्या होता है? सजाएं खानी पड़ती है। ये सब होता रहता है। तो मूल बात है जो बाप बच्चों को समझाते हैं कि अब बाप के साथ बुद्धि योग लगाओ, आत्मा अभिमानी बनकर लगाओ। क्या है? बुद्धि योग तो लगाओ, लेकिन किसी से, किस तरीके से? आत्मा अभिमानी बनकर लगाओ। माने जब भी तुम इंद्रियों से संग का रंग लेते हो बाप का, तो अपन को क्या समझो? आत्मा है। हम देह और देह की इंद्रियां नहीं है। देह समझेंगे, देह की इंद्रियां समझेंगे तो देह का सुख लेने में लग जाएंगे। बाप देह का सुख देने आया है? क्या देने आया है? है? आत्मा का जन्म जन्मांतर का सुख देने आया है ना? भविष्य 21 जन्मों का सुख देने आया है कि इस जन्म का सुख देने आया है? है? भविष्य 21 जन्मों का सुख देने आया है, और वो तुम अपनी आत्मा के द्वारा ही, आत्मिक स्थिति से ही ले सकते हो। देहभान में रहेंगे तो देह का सुख मिलेगा, और देह का सुख आत्मा के बाप से मिलेगा कि देहधारियों के बाप से मिलेगा? देहधारी के बाप से मिलेगा। तो घाटा आएगा या नहीं? घाटा आ जाएगा। बाप आते हैं, वो बाप कितना बड़ा है। सुप्रीम आत्मा आती है, क्यों आती है? सुप्रीम आत्मा आती है जिस सुप्रीम आत्मा की ज्योति सदा जागती रहती है। कभी भी वो ज्योति धीमी नहीं पड़ती। सबकी ज्योति जगाने आते हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की ज्योति जगाते हैं। वो जगाते हैं। एक की ज्योति जगाते हैं कि सारी दुनिया की ज्योति जगाते हैं? क्या करते हैं? है? दीपावली मनाते हैं तो पहले एक दीवा जलाते हैं धर्मराज का, या सारे दीवे एक साथ जलाते हैं? धर्मराज का दीवा पहले जलाते हैं, फिर उस दीवे से दूसरे दूसरे दीवे थाली में रखे हुए होते हैं तो उनको जगाते हैं। कहाँ की यादगार है? वो सुप्रीम सोल एक दीवा जगाते हैं, फिर उस एक दीवे से फिर सारे दीपकों को जगाया जाता है। कैसे भी सजाएं दे करके, पिछाड़ी में देवान जलाए करके, सारा देवान भस्म करके, फिर ड्रामा के अनुसार सबकी ज्योति जग जाने की होती है। क्या एक भी नहीं बचेगा जिसकी ज्योति जगे नहीं? अभी कैसे जगती है ज्योति? वो बाप कौन है? क्यों उनको ज्योति स्वरूप कहते हैं? ज्योतिर्लिंगम क्या कहते हैं? हैं? कैसा लिंग? ज्योति का लिंग किसको कहते हैं? किसको कहते हैं ज्योतिर्लिंगम? शिव बाप को। हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं उसको कहा जाता है ज्योतिर्लिंगम। जो प्रवेश करने वाला है उसको तो लिंग है ही नहीं, तो कौन कहता है कि मेरे लिंग की पूजा होती है और देवताओं के लिंग की पूजा नहीं होती? मेरे लिंग की पूजा होती है, कौन कहता है? वो या वो है? वो कहता है। कौन कहता है? जो साकार में जिसमें प्रवेश किया वो कहता है मेरे लिंग की ही पूजा होती है। अभी ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, अभी क्या कहते हैं? वो ज्योति स्वरूप है और फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। वो ज्योति सब में व्यापक है, बुलाते हैं ज्योति स्वरूप को, बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? ये ज्योति बुझ गई है, उजियानी हो गई है, इसलिए बुलाते हैं। फिर उनको कहते हैं, किनको? उनको। फिर उनको कहते हैं इतनी बड़ी मशीन वो सर्वव्यापी है, कौन कौन सर्वव्यापी है? साकार बाप की बिंदी सर्वव्यापी है, जो साकार बाप है उसकी जो आत्मा है उस आत्मा को जिसने जितना याद किया वो याद की शक्ति उसमें भर गई, वो स्वयं नहीं है उनमें। न अहम तेषु ते मैं, मैं उन पत्तों पत्तों में टहनियों टहनियों में नहीं हूँ, लेकिन वो पत्ते पत्ते टहनियां टहनियां वो सब मुझ बीज के अंदर हैं। नीम का बीज देखेंगे पट से बुद्धि में आ जाएगा वृक्ष ऐसा होता है। तो नीम के बीज में वो वृक्ष है या नहीं है? नहीं है, है या नहीं है? है नहीं तो निकलता कैसे है? लेकिन वो बीज उन पत्तों में नहीं है, वृक्ष में नहीं है। जो कह दिया है सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी नहीं है, उसकी याद सर्वव्यापी हो जाती है। उसका जो संग का रंग लिया है वो हरेक में व्यापक हो जाता है। तो सबकी ज्योति तो इतनी बड़ी हो जावे कि जितनी बाप की है। क्या कहा? इतनी बड़ी मशीन, इस मशीन से कोई सदाकाल ज्वाइंट हो जावे तो क्या रिजल्ट होगा? उसकी मशीन भी बाप समान हो जावे। इसलिए उनके लिए वो कहते हैं और कहलवाते हैं कि जिसको साक्षात्कार होते हैं तो वो ज्योति, अखंड ज्योति के साक्षात्कार, बस ज्योति ही ज्योति दिखाई देती है। वो अर्जुन कहते हैं बस 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 करो, अब मैं सहन नहीं कर सकता, इतनी करंट है तुम्हारी कि मैं इस करंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी ऐसा होता है? अखबार में भी एक दिन निकला था, मोबाइल की बैटरी बहुत ज्यादा भर गई और वो डिटैच करना भूल गया और इतनी जोर से फटी कि दो चार को मार दिया। जैसे बम ब्लास्ट होता है तो बैटरी सहन नहीं कर सकी उस पावर को। तो अर्जुन कहता है बस करो, अब तुम्हारी करंट में सहन नहीं कर सकता, बहुत करंट कहां होती है तो देख नहीं सकते हैं ना। तो अभी जो बच्चों को समझाना चाहिए, बाहर वालों को समझाना चाहिए, जैसे ये बच्ची बैठी है तो ये बच्ची से समझती है कि हम सबको समझावें, एक को समझाने की बात नहीं। अच्छा हाँ, सबको भी समझाना चाहिए। उन सबको क्या समझाना चाहिए? कि तुम जो आत्माएं हो आत्माओं को सोल भी कहते हैं विदेशों में, या आते तो जब हो यहां ऊपर से तब तो प्योर हो, और वो आत्माएं जब ऊपर से आती हैं तो करंट फुल होती है, जैसी छोटी बड़ी जिसकी बैटरी वैसा उसमें करंट होता है तुम्हारे में, और सतो प्रधान हो, गोल्डन एज सतयुग में हो और प्योर सोल्स हो, और फिर जो प्योर सोल है उनको जन्म लेते लेते इंद्रियों के संग से सुख भोगते भोगते इम्प्योर भी जरूर होना है क्या? सतयुग की जो देव आत्माएं हैं वो इंद्रियों से सुख भोगती हैं या नहीं? तो जैसे जैसे इंद्रियों से सुख भोगती जाएंगी वैसे वैसे है डिस्चार्ज होती जाएंगी। जब प्योर बनती है तब ही तो गॉड फादर को बुलाते हो ना कि आकर को हमको लिबरेट करो, हम देहबंध में फंस गए, देह के बंधन से छुड़ाओ, देह की इंद्रियों में हम लिप्त हो गए। क्या क्या हो गया? हमारा लगाव लग गया, अटैचमेंट आ गया, आकर के हमको इस अटैचमेंट से छुड़ाओ। अभी लिबरेट का अर्थ अलग होता है, लिबरेट माने मुक्त करना। हमको पावन बनाओ वो बात अलग होती है, छुड़ाओ ये बात अलग, और पावन बनाओ वो बात अलग। जरूर पतित बने हैं कोई से, कोई से माने किस से है? जरूर पतित बने हैं कोई से है? कोई न कोई से पतित जरूर बने हैं संग के रंग में आकर। कोई अनेकों के संग में आए हों, कोई कम के संग के रंग में आए हों, तो ज्यादा पतित कौन बनेंगे हैं? जो ज्यादा संग के रंग में आए वो ज्यादा पतित बने, जो कम आत्माओं के संग के रंग में अटैचमेंट में आए वो कम पतित बने। जैसे लक्ष्मी सबसे कम पतित कौन बनती है? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में सबसे कम पतित कौन बनती 84 जन्मों में? लक्ष्मी क्यों? क्योंकि एक के संग के रंग में आई, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। बाबा भी ने भी बोला बल कलयुग की दुनिया में पतित बनना है, वो तो इसे कलयुग की दुनिया का कायदा है, सब पतित बनते हैं, परंतु हैं एक के साथ पतित बने, अनेकों के साथ पतित बनना यही ईश्वरीय कायदे के बरखिलाफ है, बेकायदे बात है। बेकायदे चलन चलेंगे तो ज्यादा पतित बनेंगे या कम बनेंगे? ज्यादा पतित बनेंगे, फिर पावन बनने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़े। तो लक्ष्मी को पहले ज्ञान लेने की ज्यादा जरूरत है। लक्ष्मी और लक्ष्मी की जो संगी साथी हैं, विजयमाला और विजयमाला के जो मणके हैं संगी साथी, उनको पहले ज्ञान लेने की ज्यादा दरकार है या रुद्रमाला के मणकों को ज्यादा ज्ञान लेने की दरकार है जो जन्म जन्मांतर राजा बनते हैं, ढेर रानियां रखते हैं, हैं? किसको ज्यादा दरकार है? रुद्रमाला के मणकों तो 40 साल हो गए नाक रगड़ते रगड़ते। रुद्रमाला के मणके ज्ञान ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? है? और वो ज्ञान अभी तक भी लक्ष्मी और लक्ष्मी के संगी साथी नहीं ले रहे, उनको ज्ञान की जरूरत ही नहीं। वो लास्ट में भी आवेंगे तो भी फास्ट चले जावेंगे, और हम इतने साल से रगड़ रहे हैं, हमारा किनारा ही नहीं लग रहा। तो देखो ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम जब ऊपर से आए थे तो सतोपदान थे, तो बताया लिबरेट शब्द अंग्रेजों का है क्या? हमको लिबरेट करो, छुड़ाओ, माने हम जो इन देहधारी धर्म पिताओं धर्म गुरुओं देहधारियों के पकड़ में आ गए, इन्होंने हमको पकड़ लिया ना, तो इनकी पकड़ से हमको छुड़ाओ। तो कहेंगे लिबरेट, लिबरेट करो। पावन बनने का अर्थ अलग है, उन राक्षस संप्रदाय से लिबरेट तो करना अलग बात, फिर उनसे जब बुद्धियों को टूट जाए लिबरेट हो जाए फिर पावन बनने की बात आती है। तो पावन किसी और के साथ बनेंगे या जिनसे लिबरेट हुए हैं उन्हीं से पावन बनेंगे? है? अरे पावन किससे बनेंगे? देहधारी धर्म पिताओं के संग के रंग में आने से हम उनके संग के रंग में आते आते उनके अटैचमेंट में पकड़ में आ गए, उन्होंने हमको अच्छी तरह से जकड़ लिया। तो पहली बात है उनसे छुड़ाओ। तो कैसे छुड़ाते हैं? ज्ञान देते हैं। क्या? कि एक निराकार सदगुरु से सदगति, और ये जितने भी देहधारी धर्म गुरु हैं धर्म पिताएं हैं इनसे दुर्गति। जब ये पॉइंट बुद्धि में बैठता है तो ज्ञान बुद्धि में बैठने से लिबरेट हो जाते हैं, उनसे बुद्धियोग हट जाता है। फिर इतना काफी है? इतना काफी नहीं। क्यों? लिबरेट तो हुए लेकिन पतित तो हैं कि नहीं? तो पावन कैसे बने? पावन बनने के लिए फिर पतित पावन का संग चाहिए। किसका गायन है पतित पावन? पतित पावन सीताराम। जो पतित से पावन बनते हैं वो मेरे को बार बार बुलाते हैं, जो पतित से पावन बनते नहीं वो मेरे को बार बार बुलाते हैं। कहाँ की बात है? हाँ, संगम युग में पतित पावन सीताराम को जिन्होंने पहचाना है वो उनका आवाहन करते हैं। जो अव्यक्तवाणी में बोला किसका आवाहन करो? है? विजयमाला का आवाहन करो, माने अव्वल नंबर सीता का आवाहन करो। अव्वल नंबर सीता का आवाहन करेंगे तो क्या होगा? है? अव्वल नंबर सीता के आने से जो अव्वल नंबर आत्मा है अल्लाह अव्वल दीन, वो भी पावन बनेगी। पहले कौन पावन बनेगा? है? सीता के आने से पहले कौन पावन बनेगा? राम वाली आत्मा पावन बनेगी, फिर राम के द्वारा सभी पावन बनेंगे। तो बताया कि पावन बनने का अर्थ अलग और दुख से लिबरेट होना माना अलग, अलग बात। तो ये बातों की रूढ़िहान बाप बैठ तुम्हारे से करते हैं क्या? क्या कहा? कौन सी बातों की रूढ़िहान? अरे लिबरेट होना अलग बात और पावन होना अलग बात। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए भारतवासी, उनको दूसरे धर्म के धर्म पिताओं ने, फॉलोअर्स ने अपने धर्म में जकड़ लिया ना, तो वो पकड़ में आ गए उनकी। तो पहली बात है उनसे उनको लिबरेट करो, छुड़ाओ। कैसे छुड़ाएं? हैं? बुद्धि में ज्ञान बैठेगा कि एक के संग के रंग में आने से, एक को याद करने से पावन बनेंगे और अनेकों को याद करने से पतित बने, तो अनेक देहधारी धर्म गुरुओं से बुद्धि योग टूट जाएगा। एक तारे एक संग तारे, तो एक संग जोड़े, जो हमको पार ले जाएगा उसी के साथ जोड़े। कौन ले जाएगा पार? खुद पार जाएगा तभी तो पार ले जाएगा। तो इस मनुष्य सृष्टि में कौन ऐसी आत्मा है, कौन ऐसा व्यक्तित्व है जो पार जाता है इस संसार सागर के? हैं? शंकर चाप जहाज, जिसका नाम दूसरा मुरली में दिया है चंद्रकांत वेदांत जहाज। ऐसा जहाज चंद्रमा की कांति वाला, वेदों शास्त्रों का अंत करने वाला जहाज। वेदों शास्त्रों की दरकार ही नहीं। तो बताया अब इन बातों को तुम बाप से रूढ़िहान करते हो, सुनते हो, समझते हो, और तुमको आए करके जो रावण का राज्य यहाँ है, शैतान का राज्य, इस शैतान के राज्य से तुमको लिबरेट करते हैं। किसके राज्य से? शैतान के राज्य से लिबरेट करते हैं। लिबरेट हुए कौन से युग से? शैतान का राज्य शुरू होता है द्वापर युग से। कर्मेंद्रियों से कर्म करना कौन से युग से शुरू होता है? द्वापर युग से। तो रावण सिखाता है कर्मेंद्रियों से कर्म करो, ही तुम्हें सुख मिलेगा। क्या? कर्मेंद्रियों का सुख लेना देना सिखाता है। और बाप? बाप क्या सिखाते हैं? हैं? हाँ, आत्मा का काम है जानकारी लेना और जानकारी देना। आंखें देखती हैं, जानकारी लेती हैं। आंखें देखती हैं, जानकारी लेती हैं। ये सुंदर है, ये भोंडा है, ये काला है, ये ऐसा है, ये वैसा है, आंखों ने देखा, आत्मा को बताया। तो आंखों द्वारा ज्ञान मिला ना सुंदरता का या बदसूरत का, आंख द्वारा ज्ञान मिला ना, तो ये ज्ञान इंद्रिय। ऐसे ही कान द्वारा सुरीली आवाज है, बेकार आवाज है, सुनने में अच्छी नहीं लगती। जैसे कोई गीत गाते हैं ना, तो कोई तो बड़े सुरीले भाव से ढंग से गीत गाते हैं, जैसे लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत कितना सुरीला लगता है, और कोई ऐसे चिल्लाते हैं कि उनका चिल्लाना ही अच्छा नहीं लगता। वही गीत लता मंगेशकर गाएगी और वही गीत भांड गाएगा तो कितना खराब लगता है। तो कान बताता है क्या, ये सुरीली आवाज है, ये भोंडी आवाज है। ऐसे ही जिभ्या, ये मीठा है, ये तीखा है, ये कड़वा है, ये बकटा है, जिभ्या बताती है ना, तो ये भी ज्ञान इंद्रिय। तो इस तरह ये जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं वो सीधी आत्मा से कनेक्टेड है। बाकी कर्मेंद्रियों का जो कनेक्शन है वो ज्ञानेंद्रियों से कनेक्ट होता है, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा फिर आत्मा से कनेक्शन मिलता है। तो क्या करना चाहिए, सीधा ही कनेक्शन जोड़ना चाहिए या थ्रू 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 करके, जैसे भक्त लोग हैं हनुमान की पूजा करते हैं, हनुमान है राम की पूजा करता है, राम है शंकर की पूजा करता है, शंकर है शिव को याद करता है। तो क्या करना चाहिए, हनुमान में राम में शंकर में उलझना चाहिए या सीधा ही शिव बाबा को याद करना चाहिए? सीधा ही याद करना चाहिए। तो ये जो कर्म इंद्रियां हैं वो कर्म में फंसाने वाली है, आसक्त कराने वाली। देखा होगा जो कर्मणा सेवा करते हैं उनमें देह अहंकार बहुत आता है, क्यों? ये देह अहंकार पैदा होता है रजोगुण से, और रजोगुण आता ही है द्वापर युग से। ये द्वैतवादी रावण का राज्य है, रावण माने अनेक सिरों वाला, अनेक मत देने वाला, चाहे दो मते हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे दस हो, एक मत देने वाला है राम। राम रामलीला दिखाते हैं तो राम को एक सिर दिखाते हैं और रावण को दस सिर दिखाते हैं। क्या मतलब, रावण राज्य में अनेक मतें चलती है संसार में और राम राज्य में एक मत चलती है, एक मत चलती है। राम राज्य में एक मत चलती है क्या, एक आत्मा की मत चलती है? चलती है। शिव की मत चलती है या शिव जिसे राम में प्रवेश करता है उसकी मत चलती है या दोनों की मत चलती है? एक मत चलती है, दो आत्माओं की मत नहीं है। हाँ, वो जो शिव की मत है वो शिव कहता है स्वयं कि मैं आता हूँ तो तुम बच्चों को आप समान नंबरवार बना के जाता हूँ। तो कोई बच्चा तो है जो 100% बाप समान बनता है, 100% बाप समान बन गया तो बाप ही जैसा हो गया ना, कि अंतर हुआ है? अंतर हुआ। तो एक आत्मा ऐसी है सच रूपी रंगमंच पर, मनुष्य आत्मा, कि जिसकी मत उसकी मत से मिलकर एक हो जाती है। बाकी जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं तुंडे 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 मतिर्भिन्ना, सबके अंदर अलग 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 प्रकार की मति बुद्धि है, एक जैसी अकल दो की मिलकर के नहीं हो सकती। तो किसकी मत पकड़ना चाहिए है? एक की मत पकड़ना चाहिए। कोई कह सकता है एक की मत तो नहीं है, शिव अलग है आत्मा, राम अलग है आत्मा, लेकिन राम वाली आत्मा भी उसे याद करते करते जब शिव समान बन जाती है तब उसकी मत जो है वो है श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत, उसे तब कहा जाता है ऊंचेते ऊंचा भगवान, ऊंचते ऊंच मत देने वाला भगवान। क्या नहीं तो ऊंच और नीचे इस दुनिया की बात है या वहां की बात है? इस दुनिया की बात है। तो बताया एक से आता है ज्ञान, क्या एक से आता है ज्ञान, ज्ञान से होता है सुख, और अनेकों से आता है अज्ञान, और अज्ञान से होता है दुख। इसलिए क्या करना चाहिए है? एक एक की मत पकड़नी चाहिए। वो एक पहचानेंगे कैसे है? है क्या ज्ञान? आत्मा का ज्ञान तो मिला हुआ है, हम है आत्मा तुम है आत्मा दोनों आपस में भाई भाई, ज्ञान नहीं मिला हुआ है? ब्रह्मा कुमारियां कब से गा रही है, डांस कर करके गाती है, हम है आत्मा तुम हो आत्मा आपस में भाई भाई है? ज्ञान नहीं है ये? फिर अरे आत्मा आत्मा भाई भाई तो हैं, लेकिन किस धर्म की आत्मा है? दुनिया में तो अनेक प्रकार के धर्म हैं। हम कौन से धर्म में हमने ज्यादा पार्ट बजाया है? हम किस कैटेगरी की आत्मा है? अव्वल नंबर कैटेगरी के धर्म में आने वाले हैं जन्म जन्मांतर, या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है? अव्वल नंबर एक धर्म में आने वाले हैं जन्म जन्मांतर, तो हम एक के बच्चे हैं, क्योंकि हमने किसी दूसरे को अपना बाप नहीं बनाया। एक के ऊपर अटल निश्चय बना रहे तो एक के बच्चे। लेकिन ड्रामा क्या कहता है? माया किसी को छोड़ती है? है? माया किसी को नहीं छोड़ती। भले अव्यक्तवाणी में बोल दिया माया तंग आ चुकी है, माया तुम बच्चों के योग बल के सामने थक चुकी है, हॉस्पिटलाइज हो चुकी है माया बेटी, लंबे समय के लिए कामा में चली गई तो थक गई ना, तंग आ गई ना तुम बच्चों के योग बल से, शरीर भी छोड़ देती है। फिर क्या करती है? सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद बुद्धि और ज्यादा तीखी हो जाती है, या बुद्धि भैंस बुद्धि बन जाती है, है? ज्यादा तीखी हो जाती है, क्योंकि स्थूल देह है और स्थूल देह की इंद्रियों का बंधन खत्म हो गया। एक सेकंड में वो आत्मा इस दुनिया में कहीं भी जा सकती है। जिन आत्माओं के साथ उसका कनेक्शन है उन आत्माओं में प्रवेश कर सकती है। मान लो इस्लाम धर्म की आत्मा है माया बेटी, इस्लाम धर्म का आधार मूर्त या बीज रूप है, तो क्या करेगी? इस्लाम धर्म में जो भारतवासी कन्वर्ट हुए थे, वो कन्वर्ट हुए थे कि नहीं, उन्हें में प्रवेश कर जाएगी। पूर्व जन्म का हिसाब किताब है ना, तो पूर्व जन्म के हिसाब किताब के अनुसार उनको पकड़ लेगी, कहां जा रहे हो, हमसे तो पहले निपटो। कोई किसी को ऑक्यूपाई कर लेता है, पकड़ लेता है अपने कंट्रोल में, एक बार ले लिया तन से मन से, तो वो सहज छोड़ता है क्या? है? नहीं छोड़ता। तो ऐसे ही है वो माया बेटी, ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, किसी को छोड़ती नहीं है। भले बोल दिया तंग आ गई है, थक चुकी है, फिर भी शरीर छोड़ने के बाद, सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद युक्ति निकाल लेती है। क्या क्या युक्ति निकालती है? हाँ, माने क्या युक्ति, क्लियर करो। हाँ, जो प्रकृति है वो प्रकृतिपति से लड़ जाती है। प्रकृति है जगदम्बा और माया बड़ी तीखी बुद्धि है। वो जानती है कि ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार में जगत पिता और जगत माता, ये दो हस्तियां बड़ी पावरफुल हैं। जो मानवीय परिवार है इस सृष्टि में, उसमें माता पिता कौन है? जगत पिता और जगत माता। तो माया जानती है कि मायापति को तो मैं जीत नहीं पाऊंगी। क्या? मायापति को नहीं जीत पाऊंगी, लेकिन जगत माता को तो कंट्रोल कर सकती हूं। कर सकती है कि नहीं? तो जगत माता को कंट्रोल में ले लेती, हाथ मिला लेती, बुद्ध रूपी हाथ मिला लिया, और बुद्ध रूपी हाथ मिला करके वो बड़ी खुश होती है। कहती ये जितने भी पूरे हैं बच्चे हैं, ये सब मेरे बच्चे हैं, बिल्ली के, माया बिल्ली के पूंगरे। इस दुनिया में अब महाविनाश की आग लगने वाली है। क्या मिसाल दिया, कुम्हार बर्तन पकाता है ना, गड्ढे में बर्तन डालता है, उसमें लकड़ी वकड़ी घास फूसा लगाता है और आग लगा देता है। तो इस दुनिया में आग लगने वाली है, उनमें कहीं बिल्ली के पुंगड़े भी बैठे हुए हैं बर्तनों में, बहुत खुश होती है, सारे ही जल जाएंगे, सब मर जाएंगे। इनको मैं बाप के नजदीक नहीं पहुंचने दूंगी, मैं पहले सरेंडर होंगी। क्या अगर ये पहले सरेंडर हो जाएंगे तो दुनिया का आधा हिस्सा इनको मिल जाएगा, इसलिए वो किसी को पहले सरेंडर नहीं होने देती। सबको अनिश्चय बुद्धि बनाती है। तो गीत बना दिए हैं गांवड़े की माताओं ने, उनको कहां से टचिंग हो गई, माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। ब्रह्मा और ब्रह्मा वत्सों को भी नजरिया मारी, विष्णु और विष्णु वत्सों को भी नजरिया मारी, लेकिन शंकर को मार नहीं पाई, लेकिन फिर भी क्या कर गई, दाढ़ी हिलाई गई। माने प्रकृतिपति को कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, हैरान हैरान तो करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि माया जिस प्रकृति रूपी जगदम्बा से हाथ मिलाती है, वो जगदम्बा राज करेगी खालसा। सबके ऊपर राज करती है, यहां तक कि लक्ष्मी माता को भी एक बार अपनी कंट्रोल में ले लेती है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है भारत में, क्या कि वर पक्ष की जो माँ है वधू के घर जाती है ना, और उस वधू की गोद भर करके आती है धन संपत्ति से। शायद दक्षिण भारत में परंपरा हो न हो, है तो जो जगदम्बा है सूर्यवंश पक्ष की, कृष्ण सूर्यवंश का, वो जगदम्बा चंद्रवंश में जाती और जो ज्ञान सुना है समझा नहीं है पूरा गहराई से, वाचा से उससे कोई नहीं जीत सकता, वाक देवी है सरस्वती, क्या है वाचा की देवी, तो वो वाक देवी जो भी ज्ञान अर्जन किया है वो सारा ज्ञान सुना देती है। किसको, वधू को, माना चंद्रवंशी राधा को, उसकी गोद भर देती है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर जो भी उसने सुना है ज्ञान समझा है तो अच्छा ही लगेगा, तो प्रभावित हो जाती है। प्रभावित हो जाएगी तो उसके ऊपर राज करेगी कि नहीं, प्रभावित हो गई माने प्रजा बन गई, और जिसने प्रभावित किया वो राजा बन गया, तो राज करेगा खालसा, माना उस खालसा के अंदर में लक्ष्मी भी पहले आ जाती है। यहां तक के रुद्रमाला के जितने भी बच्चे हैं चाहे रुद्रमाला का सेकंड माला का काशी माही क्यों न हो, वो भी थोड़े समय के लिए प्रभावित हो जाएगी। सारी दुनिया पर राज करती है थोड़े समय या लंबे समय तक। ब्रह्मवाक्य मुरली में भी बता दिया पहले से, शिव बाप वर्षा देते हैं प्रजापिता को और प्रजापिता वर्षा देता है जगदम्बा को और जगदम्बा से सब मनुष्य आत्माओं को वर्षा मिलता है। जो जगदम्बा के प्रभाव से पहले मुक्त हो जाएगा वो पहले वर्षा ले लेगा, दूसरे नंबर पर मुक्त होगा वो दूसरे नंबर पर वर्षा ले लेगा, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर, आठ नंबर पर जो मुक्त होंगे वो 2018 के बाद बाप का वर्षा प्राप्त कर लेंगे, फिर नंबर बार निकलते जाएंगे। 2028 तक पूरी राजधानी तैयार हो जाती और माया की लड़ाई चलती रहती है। 28 तक जोर से युद्ध होगा, महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध, इतना बड़ा युद्ध होगा, इतना बड़ा रूप ले लेगा कि उस युद्ध में राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। और जो वधू है चंद्रवंश की राधा, वो उन सब के प्रभाव से मुक्त होकर सूर्यवंश में आ जाती है। उसका आना हुआ माना खेल खलास। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो बताया शैतान से लिबरेट करते हैं, शैतान से लिबरेट करके माना रावण से लिबरेट करके कहां ले जाते हैं, जो जगदम्बा है उसके मस्तक में कौन प्रवेश है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा मंद बुद्धि है या तीक्ष्ण बुद्धि है, है? रावण संप्रदाय में है या राम संप्रदाय में है, है? रावण संप्रदाय में, रावण संप्रदाय में है तो जो रावण का चित्र दिखाते हैं उसमें 10 सिरों को कंट्रोल करने वाला कौन बैठा है ऊपर, रावण के 10 सिरों के ऊपर कौन बैठा है, गधा बैठा है। वो किसका पार्ट हुआ, ब्रह्मा बाबा का पार्ट हो गया। मंद उदरी, उदर माने पेट, बुद्ध रूपी पेट मंद बुद्धि है, वो भी 5 सिर है रावण में भारतीय, और 5 विदेशी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 10 सिर हैं। ये 10 सिर शैतान के सिर कहो रावण के सिर कहो, इन रावण के सिरों से लिबरेट करते हैं। तो पहले पहले कौन लिबरेट होगी, कौन से धर्म वंश से निकलेगी वो आत्मा जो रावण से लिबरेट होगी, राधा निकलेगी, राधा निकलेगी या 8 निकलेंगे, हाँ पहले पहले योग ही नहीं मान के, चंद्रवंश का भी, फिर इस्लाम वंश का भी, फिर बौद्ध वंश का भी। ऐसे जो रुद्रमाला के मुख्य आठ मणके हैं वो निकले, तो शैतान से लिबरेट करके कहां ले जावेंगे? अरे अरे भगवान के पास ले जावेंगे ना। पतित पावन कौन है, शैतान या भगवान? भगवान। ये वो विचारों को इतना नहीं समझ में आता है विदेशियों को कि लिबरेट करके कहां ले जावेंगे, या जो विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं उनको पता नहीं लगता है कि कन्वर्ट करके कहां ले जावेंगे, लिबरेट करके कहां ले जावेंगे। ये तो जरूर समझते हैं कि यहां से लेकर के हमको घर ले चलो। कहां ले चलो? शांति धाम ले चलो। शांति धाम ले चलो यानी साइलेंस का जो वरदान है वो हमको दो, हमारी आत्मा शांति का अनुभव करे, शांत में रहे। तो अभी ये तो बच्चों को समझाना है कि यहां इस दुनिया में कोई शांत होकर नहीं रह सकता सदाकाल। ये शांति धाम है या दुख धाम है? है? दुख धाम में शांति होती है क्या? होती है। दुख धाम में तो शांति नहीं हो सकती। तो यहां इस कलयुग की दुनिया में कोई भी शांत नहीं रह सकता। जिसको ये लोग शांत कहते हैं वो तो शांति है वहां शांति धाम में, इस दुनिया में तो वो एवरलास्टिंग शांति हो ही नहीं सकती, एक भी मनुष्य के पास वो शांति नहीं हो सकती। कोई है इस दुनिया में ऐसा जो तन से मन से धन से समय संपर्क संबंधियों से सदा शांत रहता हो? है कोई? देखा, कोई नहीं हो सकता। और फिर शांति वहां भी है क्योंकि एक राज्य जब तक है तब तक शांति है। सत्युग त्रेता में एक का राज्य या अनेकों का राज्य? एक का राज्य तो शांति, अर्थात घर में कोई भी हंगामा नहीं होता, वो राम का घर है, राम राज्य। बाल बच्चे वगैरह शांत नहीं करते हैं वहां क्योंकि एक कीमत पर है, वहां उनको बरगलाने वाला कोई दूसरा, दूसरी प्रकार की मत देने वाला है ही नहीं। पहले से ही बता दिया। क्या बता दिया? ये ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा मजबूत बन जाएगा कि जिसमें कोई भिखारी पांव भी नहीं रख सकेगा। भिखारी होगा, द्वैतवादी होगा, दो मतें सुनाने वाला होगा तो ऐसी ऐसी बातें सुनाकर विपरीत बुद्धि बना देगा, प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। तो विपरीत बुद्धि कैसे बनाएगा? ये मनुष्य जो यहां तंग होते हैं वो अशांति से तंग होते हैं। कैसे? अशांति से तंग होते हैं। नहीं तो गीता क्या कहती है? यशमान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च। जो लोगों से परेशान नहीं होता, अशांत नहीं होता, और जो लोगों को परेशान नहीं करता, अशांत नहीं करता, वो ही एक बाप का बच्चा है, जो खुद भी शांत अशांत होता है दूसरों को भी अशांत करता है, खुद भी परेशान होता है दूसरों को भी परेशान करता है, वो एक बाप का बच्चा नहीं हो सकता। तो ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये मारामारी घर में जो होता है, ये बच्चों से कितनी अशांति होती है, तुम तो इस बात को जानते हो ना। क्या है घर घर में जो बच्चे हैं वो अशांति पैदा करते हैं या नहीं करते हैं? है क्यों? एक बाप के बच्चे नहीं है क्या? है एक परिवार में 10 बच्चे हैं, मारा मारी लड़ाई झगड़ा होता है या नहीं होता है? है होता है, माना एक बाप के बच्चे नहीं है। संस्कार अलग अलग संस्कार हैं, और कोई बात तो नहीं हो सकती। सिर्फ पूर्व जन्म के संस्कार ही आत्मा में कार्य करते हैं या वंशानुक्रम भी कार्य करता है?
पूर्व जन्म के आत्मा में जो अच्छे बुरे संस्कार भरे हुए हैं, भरे है ना, अच्छे बुरे जब होंगे, वो संस्कार ही सिर्फ काम करते हैं, या जिस बाप से जन्म लिया है उस बाप का खून भी काम करता है,
उस बाप का
खून भी काम करता है, यही नफरत है। तो हम बच्चों को बता दिया क्या कि 10-20-50 भूले तो तुम बच्चे भी रोज दृष्टि की करते हो, दृष्टि विचारी बनती है। एक परिवार है उसमें 10 बच्चे हैं
और पत्नी की दृष्टि एक में ही लटकी रहती है या अनेकों में भी जाती है? की दृष्टि एक पत्नी व्रतधारी ही है या चंचल भी होती रहती है? हैं? तो वाइब्रेशन में अंतर नहीं पड़ेगा? हम बच्चे भी तो परिवार वाले हैं ना, या तो परिवार में रहते हैं या परिवार बनाते हैं। तो परिवार में जो माँ बाप हैं, उन माता की और पिता की जो दृष्टि है वो सदा कंट्रोल में रहती है, एक में आसक्त होकर रहती है। जैसे राधा कृष्ण की दृष्टि राधा और कृष्ण में ही डूबती है, दूसरे का वाइब्रेशन दृष्टि से लेते हैं या नहीं लेते हैं? है? लेते हैं। तो बच्चों में वो संस्कार जाएंगे या नहीं जाएंगे? है? हाँ, माता जो सोचेगी वो बच्चे के अंदर जाएगा, गंदा सोचेगी, व्यभिचार सोचेगी तो व्यभिचार बच्चे के अंदर जाएगा, व्यभिचारी संकल्प, व्यभिचारी वाइब्रेशन बच्चे के अंदर भरता जाएगा। एक बच्चे के अंदर एक जैसा, दूसरे बच्चे के अंदर दूसरे जैसा, तीसरे बच्चे के अंदर तीसरा जैसा, अनेक प्रकार के व्यभिचारी वाइब्रेशन वाले बच्चे पैदा होंगे। तो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे कि नहीं? है? लड़ेंगे झगड़ेंगे। अब बाप आया है, क्या करने आया है? वसुधैव कुटुंबकम। क्या करने आया है? सारी वसुधा को एक सूत्र में बांधने के लिए आया, एक के प्यार में सब रहेंगे, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक शिव बाप नहीं, क्या एक शिव बाबा माना वो शिव स्वरूप भी हो वो आत्मा और साकार भी हो, माने शिव नहीं शिव समान हो या शिव हो, शिव समान हो शिव नहीं हो, यह अंतर की बात है। बड़ा भाई बाप समान होता है या बाप होता है, बाप समान होता है। तो ऐसे ही जो मुसलमान लोग भी मानते हैं आदम को खुदा मत कहो, क्या आदम खुदा नहीं है, आदम खुद आता है क्या है? आदम खुद आता है या खुदा खुद आता है, खुदा खुद आता है। आदम तो खुदा के भेजने से आता है, खुद नहीं आता। क्या खुदा खुद आता है, लेकिन आदम खुदा नहीं है, वो खुद नहीं आता, वो भेजता है तब आता है। लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, जो खुदा की रोशनी है वो ही आदम के अंदर रोशनी है, वो ही ज्ञान की रोशनी, वो ही अखंड ज्योति। कैसी अखंड ज्योति, जिस ज्ञान की रोशनी में वो डूबा हुआ है उस ज्ञान की रोशनी को पूरा ही निकाल ले कोई तो भी उसमें पूरा ही बचता है, ऐसा शिव समान बन जाता है खुदा के समान। तो लेकिन खुदा नहीं है तो क्या करें है, उसकी याद में इतने तल्लीन हो जाएं, इतना लीन हो जाएं कि मैं आत्मा और वो आत्मा एक हो जाएं, मैं तुम में समा जाऊं तू मुझ में समा जाए, क्या जो उसके अंदर आत्मा में संकल्प है ज्योति बिंदु में शिव बाबा में, वो कहता है ना मन मना भव मेरे मन में समा जा, तो तेरे मन में क्या है, नो संकल्प अटल ज्योति बिंदु, क्या है क्या संकल्प है, कोई संकल्प नहीं, सिर्फ क्या है ज्योति बिंदु। तो मैं भी उस ज्योति बिंदु की याद में समा जाऊं, कुछ भी याद ना आए उसके अलावा निरंतर याद टिक जाए, ऐसे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में नो संकल्प एटॉल, एक ही संकल्प मैं आत्मा ज्योतिबिंदु, और वो ज्योतिबिंदु आत्मा उसकी याद में समाई हुई, उस साकार लिंग रूप में जो बिंदु निराकार है उसकी याद में समा गई, ऐसे समाज गई जैसे सागर में ढेर सारे बुलबुले निकलते हैं, कोई इतना बड़ा कोई इतना बड़ा कोई इतना बड़ा कोई इतना बड़ा, सारे बुलबुले उस सागर में समा जाते हैं। तो ऐसे ही हम सब बुलबुले हैं, अलग 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 संकल्प चलते रहते हैं। क्या कहा, एक के संकल्प न मिले दूसरे से, मिलते हैं है? कितने सैकड़ों हजारों लाखों संकल्प चलते हैं, लेकिन वो सारे संकल्प किस में समा जाएं? एक में समा जाएं। तो उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम से हम निकले थे सृष्टि के आदि में और उसी में समा जाते हैं। अब टाइम आ गया क्या? जिस कर्म से हम निकले थे उस बाप के अंदर से निकले थे और इस धरती माता में आकर के हमने जन्म लिया था ना, उसी क्रम से जो पहले आया था वो पहले उसमें जाएगा, जो बाद में आया वो बाद में उसमें प्रवेश हो जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो आठ हैं, तो जो आठ हैं वो आठ नंबर वार उसमें आए और नंबर वार गए। 500-700 करोड़वीं आत्मा कलयुग के अंत में आती है और कलयुग के अंत की जब शूटिंग होगी तब उसमें जाएगी, बाकी वहीं पड़ी रहेगी। वो मीडिया है कौन? शिव बाबा, जिसे गीता में कहा अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति जो शिवलिंग है उसी में दुनिया के सारे प्राणी मात्र की आत्माएं समा जाती हैं और उसी में से फिर बाहर आती है। सतयुग की पहली पीढ़ी में, पहले जन्म में वो माता पिता वाली आत्माएं 4.5 लाख उतरेंगी नंबर वार। फिर उन माता पिता रूपी जो रुद्रमाला के मणके हैं उनसे जन्म लेने वाली आत्माएं भी उनके गर्भ में प्रवेश होकर के फिर जन्म लेंगी। वसुधैव कुटुंबकम्, ये सारी वसुधा एक कुटुंब बनेगी, सारी पृथ्वी की सब मनुष्य आत्माएं अपने अंदर पहचानेंगी कि वास्तव में हमारा एक ही बाप है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, कब? एक बाप को पहचानेंगे तब या बिना पहचाने? एक बाप को पहचानेंगे, मानेंगे, जानेंगे और ये भी समझ लेंगे कि सच रूपी रंगमंच पर हम बड़े बच्चे हैं या मझले बच्चे हैं या छोटे बच्चे। सब एक दूसरे से कंट्रोल्ड होंगे। कैसे कंट्रोल्ड? जैसे मिलिट्री में जो नीचे का वॉरियर है, सिपाही है, वो ऊपर के सिपाही से, ऊपर के अधिकारी से आंख मिला के बात नहीं कर सकता, उसके हर डायरेक्शन को उसे मानना पड़े। जो हमारे परिवार की, सनातन परिवार की जो परंपरा रही है कि बड़े भाई को बाप समान रिगार्ड देते हैं। कौन? छोटे भाई लोग। सबसे छोटा भाई, उसके अंदर ये भावना नहीं आएगी कि हम बड़े भाइयों की सेवा करने वाले हैं। वो ऑटोमेटिक उनकी सेवा करेगा, ऑटोमेटिक समझेगा मैं छोटा हूं, मुझे इनके डायरेक्शन पर चलना ही चलना। तो बताया कि जो घर घर में झगड़ा होता है, मारा मारी होती है, इसका कारण क्या? मूल कारण पहचाना है? क्या है मूल कारण? है ऊंचे ऊंचे एक बाप को नहीं पहचाना। तो जिस घर में झगड़ा बहुत होता है, बहुत अशांत रहते हैं, अगर अभी दो का झगड़ा भी होता है, समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है, तो बाप भी तंग और माँ भी तंग होती है, और फिर माँ बाप दोनों ही तंग, तो बच्चों का क्या हाल होता है? बच्चे भी तंग होते हैं। तो जो उनके फिर बहन भाई काका चाचा मामा सभी तंग होने लग पड़ते हैं, क्योंकि अशांत जो मनुष्य होते हैं ना, वो जहां भी जाएंगे वो क्या फैलाएंगे? अशांति ही फैलाएंगे। अभी वो तो हुई अशांति, शरीर से जब है तभी अशांति। इसको आसुरी स्वभाव कहा जाता है। किसको? अशांत रहना और दूसरों को भी अशांत करना। बाकी तुम बच्चे तो जान गए हो कि हम आत्माएं जहां रहते हैं वो तो है शांति धाम। कहां रहते हैं? हम आत्माएं कहां रहते हैं? शांति धाम में। माने शांति धाम को इस सृष्टि पर नहीं उतारते हैं? तो कहां रहने गए? रहने वाले बनेंगे। जो साकार बाप है, उस साकार बाप में शांति धाम भी है और सुख धाम भी है। शांति धाम जड़त्वमयी है या चैतन्य है? जड़ तत्व है या चैतन्य है? नहीं, जो लिंग है वो जड़ है। लिंग क्या है? जड़ है। और बिंदु? बिंदु चैतन्य। जो बिंदु है वो है हमारा बाप। क्या? बिंदु हमारा बाप और बाकी सारा लिंग हमारा घर। तो जो घर है उस घर में हम बच्चे नंबर वार रहते। कोई सबसे ऊंची स्टेज में और कोई सबसे नीची स्टेज में नंबर वार रहते हैं। जिस नंबर से गए हैं उसी नंबर से सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरते रहते। अच्छा, तो जब सतयुग होता है तो उसको भी तो शांति धाम कहा जाता है कि वहां अशांति है, सुखधाम में शांति है या नहीं है? तो उनको फिर सुखधाम कहते हैं। जब ये सभी आ जाते हैं, प्योरिटी है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, तो वहां सुखी ही सुख है, उसको कहा ही जाता है सुखधाम, स्वर्ग, पैराडाइज, जन्नत। स्वर्ग का मतलब भी है भाई सुख और शांति, क्योंकि वहां सुख नहीं कहेंगे, सिर्फ शांति कहेंगे, शांति धाम में। क्या जब तक शांति धाम में है तो शांति में है, सुख नहीं कहेंगे, वो है ही शांति धाम, स्वीट होम, उसको कहा ही जाता है स्वीट शांति धाम, जिसका दूसरा अक्षर में मुक्ति कहा जाता है। क्या देह और देह के बंधनों से मुक्त, देह और देह की इंद्रियों से मुक्त, मोक्ष नहीं कहेंगे। जो सन्यासी लोग कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, हम इस दुनिया में आए ही क्यों, ऐसे हो सकता है क्या? भगवान को कहते हैं कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा, हर कल्प में त्रेता युग में राम का जन्म होता है, हर द्वापर के अंत में कृष्ण का जन्म होता है, हर सतयुग के आदि में नारायण का जन्म होता है, ये क्या बात हुई? इनको बार बार आना पड़ता है और हमारा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा? फिर आत्मा विनाशी हुई या अविनाशी है? क्या हुई? विनाशी हो गई। तो मोक्ष नहीं कहेंगे, मुक्ति कहेंगे। मोक्ष की हुई हो वे, फिर उनका कोई वर्णन ही नहीं सो सकता। जो मोक्ष हो गया उनका वर्णन किस बात का? उनकी तो वर्णन होते हैं कि सुख में आग लगा हुआ आया हुआ है, दुख में जाते हैं, फिर दुख में आते हैं, फिर सुख में आते हैं। कि बाहर वाले कोई भी हो में, जो इस धर्म के नहीं हैं, उनको सिर्फ इतना ही समझाना होता है कि तुमको मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए, मुक्ति धाम वापस जाना है, क्योंकि मुक्ति के पीछे जीवन मुक्ति जरूर नदी हुई है। मुक्ति में जाएंगे तो जीवन मुक्त में जरूर आना पड़ेगा, कम से कम एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति जरूर मिलती है। परंतु वो जब फिर यहाँ आ गए तब फिर उसको जीवन मुक्ति कहें। इस साकार सृष्टि में, पांच तत्वों वाली सृष्टि में, पांच तत्व से बने हुए इस शरीर में जब आवे तो कहेंगे पहले पहले उनको जीवन मुक्ति मिले। जीवन में आएंगे लेकिन मुक्त रहेंगे, भले दूसरे के शरीर में प्रवेश करेंगे। क्या दूसरे धर्म की आत्माएं द्वापर युग से जो भी उतरती हैं वो दूसरे के शरीर में आती हैं? क्यों क्यों गर्भ से क्यों नहीं आती? गर्भ से जन्म क्यों नहीं लेती है? परमधाम से आती है तो आए ना, परमधाम से गर्भ से जन्म क्यों नहीं लेती है?
जीवन
जीवन
परमधाम माने बाप का घर, कहाँ से आती है? बाप का घर। बाप का घर पवित्र है या अपवित्र है? हैं? तो पवित्र धाम से आएंगी तो पावरफुल आत्माएं हुई या कमजोर आत्मा हुई? तो पावरफुल आत्मा जो होगी, पवित्र आत्मा होगी, वो जो गर्भ जेल होता है द्वापर युग से, वो तो गुमूत की दुनिया है। गर्भ जेल में कहाँ रहना पड़ता है? गुमूत की दुनिया में रहना पड़ता है। गर्भ में रहना मना आत्मा हाय हाय करती है, हमको गर्भ से बाहर निकालो, तो वो तो अच्छी बात नहीं। तो पहली बार जो सतोपधान आत्मा आएगी वो दुख नहीं सहन कर सकती, बाप के घर से आई है, पावरफुल आत्मा बनकर के आई है, इसलिए किसी के शरीर में प्रवेश करके सुख भोगेगी। लेकिन मान लो क्राइस्ट की आत्मा आई, जीसस में आई, तो फांसी किनिया जो ठोंकी जाती है उसका दुख जीसस वाली आत्मा भोगेगी या क्राइस्ट वाली आत्मा भोगेगी? है कौन भोगेगा? क्राइस्ट वाली आत्मा सात्विक है, पावरफुल है, इसलिए वो जब चाहे तब बाहर निकल जाएगी, वो बंधन में नहीं है। और क्राइस्ट वाली आत्मा, वो जीसस वाली आत्मा, वो तो देह के बंधन में है ऑलरेडी, इसलिए उसको दुख होता है। जीसस को जो क्रॉस का दुख है वो क्राइस्ट वाली आत्मा पहले जन्म में नहीं भोगती, तो उसको कहेंगे जीवन मुक्ति। वो जीवन पहला जो है, पहला जन्म, वो जीवन में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्त होकर के ही रहती है, दुख दर्द को महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि पहले पहले जो आएंगे तो जीवन मुक्त होकर रहेंगे, पीछे जीवन बंध में आते हैं। पहला जन्म सुख में रहेंगे, देह से सुख भोगेंगे, उस देह से दुख नहीं भोगेंगे, लेकिन जो अगला जन्म मिलेगा वो गर्भ से मिलेगा। क्यों? क्या कारण? क्यों? हाँ, पतित आत्मा का संग किया। जीसस जो है वो तो पूर्व जन्म से जन्म लेता आया, देव आत्मा है। क्या, कौन सी आत्मा है? चौथे नवंबर का नारायण है, वो द्वापर युग में आकर के 500 साल बाद, है ना, 500 साल बाद द्वापर के वो पतित शरीर होता है। देवताएं सुख भोगते भोगते आए ना नीचे, तो पतित शरीर है, उस पतित शरीर के संग के रंग में क्राइस्ट वाली आत्मा आती रही या नहीं आती रही? आती रही। तो वो आत्मा का जो हिसाब किताब है, पतित के संग बनाना, संग का रंग लगाना, तो वो संग का रंग अगले जन्म में उस आत्मा को गर्भ में गिरा देता है, गर्भ में जाकर के उसे त्राह त्राह करनी पड़े। जीवन बंध में आते हैं, क्योंकि हाफ एंड हाफ हो गया ना। क्या हो गया? हाफ एंड हाफ माना जिसमें प्रवेश किया उसके संग का रंग लगा उस बैटरी को, तो उसकी बैटरी को उसने खींच लिया, हाफ एंड हाफ हो गया, फिर उसको नीचे जाना पड़े। वो पावन आत्मा आई थी, पावरफुल। उस पावरफुल आत्मा जो आई जिसमें प्रवेश किया चौथे नारायण में, तो वो चौथा नारायण नीचे गिरी हुई आत्मा है ना, उसकी बैटरी खाली हुई है ना, पतित आत्मा बनी ना, वो पतित आत्मा की जो बैटरी है वो खाली है, और ऊपर से आने वाली आत्मा की बैटरी है भरी हुई है, तो वो बैटरी की ताकत उसमें चली गई। किसमें? जिस इसमें हाफ एंड हाफ हो गया। जब हाफ हो गया तो फिर उसे गर्भ से जन्म लेना पड़े। जैसे त्रेता का अंत होता है, तो देव आत्माएं जो हैं वो आठ कला से नीचे आ जाती है। सच के आदि में 16 कला संपूर्ण थी, द्वापर के आदि में 8 कला से भी कम होने लगी तो पलड़ा ऊपर उठ गया। पाप का पलड़ा भारी होने लगा, इसलिए फिर गर्भ महल गर्भ जेल में से जन्म लेना ही पड़े। ऐसे ही वो आत्मा ऊपर से आने वाली आत्मा ने, पावरफुल आत्मा ने चौथे नंबर के नारायण में प्रवेश करके अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया। चौथा नारायण उसी बैटरी फुल होने लगी, तो हाफ हाफ हो गया। वाह।
राधा कृष्ण जब जन्म लेंगे, राधा कृष्ण जन्म लेंगे,
है?
पहले जन्म
कैसे होगा?
बच्चों के रूप में जब जन्म लेंगे
तो
वो जीवन मुक्ति का कैसे होगा?
वो कोई प्रवेश हो करके वो तो गर्भ महल में आते हैं, गर्भ जेल में थोड़े ही आते हैं। जो ऊपर से आली आने परमधाम से आने वाली आत्माएं हैं, द्वापर युग से जो उतरती हैं, वो द्वैतवादी आत्माएं हैं, और जो कृष्ण राधा कृष्ण वाली आत्मा है वो द्वैतवादी थोड़े ही हैं, जो कोई में व्यक्ति में प्रवेश करेंगी वो तो संगम युग में बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करती है, और सतयुग में स्थूल पेट में प्रवेश होकर के उस गर्भ से ही जन्म लेती है। वो गर्भ महल होता है, उनको जन्म देने वाली माता को, जन्म लेने वाले बच्चे को रोने चिल्लाने और दुखी होने की बात नहीं होगी। उनकी शरीर की संरचना ही ऐसी होगी फर्स्ट क्लास, जैसे आजकल भी देखा जाता है, कोई कोई माता है कोई दुख नहीं होता उनको, कोई हॉस्पिटल में जाकर के बच्चा निकलवाने की जरूरत नहीं, पेट फड़वाने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से बच्चा पैदा हो जाता है। आज की दुनिया में भी जब ऐसे देखा जा सकता है तो सतयुग त्रेता में नहीं होता होगा। तो हाफ एंड हाफ हो जाता है, प्रवेश करने वाली आत्मा आधी बैटरी रह गई, और जिसमें प्रवेश किया उसकी बैटरी भी जो खाली थी वो आधी भर गई। तो फिर क्या अंजाम होगा? जो ऊपर से आने वाली पावरफुल आत्मा थी वो आत्मा गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। तो पीछे जो आते हैं वो देरी देरी से आते रहते हैं, तो फिर वो हाफ तो नहीं हो सकते हैं ना। फिर भी इतनी सुख और शांति जितनी सतयुग में होती है इतनी तो नहीं मिल सकती है। ऊपर से आने वाली आत्माएं एक जन्म ही सुख भोगती है, और सतयुग त्रेता में तुम बच्चे जो उतरते हो तो तुम एक जन्म चुप सुख भोगते हो कि ज्यादा नंबर बार सुख भोगते हो? बाकी ये तो जरूर है कि सतो प्रधान सो सतो जरूर होने का है, रजो जरूर होना है, तमो जरूर होना है। फोर ग्रेड से पास होते हैं, क्या कहा, दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार जरूर होती है। बाबा ने समझाया ना, पिछाड़ी में जो अभी आते होंगे वो क्या आते होंगे, बेचारे एक जन्म लेते होंगे, क्या सन 36 में जो उतरेंगे कितने जन्म लेंगे, बेचारे एक जन्म लेते होंगे, आधा जन्म लेते होंगे, तो एक जन्म में ही आधा सुख और आधा दुख अनुभव करते हैं। वो क्या अनुभव करेंगे सुख और दुख का, श्रेष्ठ अनुभव करेंगे सुख का, पूरा अनुभव करेंगे सुख का, 16 कला संपूर्ण का सवाल ही पैदा नहीं होता। कलयुग में तो हो ही जाते हैं कलाहीन। एक ही जन्म में उनको आधा समय सुख, एक ही जन्म में ही उनकी बैटरी आधा आधा हो जाती है। जब लास्ट में आए हैं तो आधा आधा बैटरी हो गई बीच में ही, तो उन्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा? नहीं, शरीर छोड़ेंगे और गर्भ में जन्म लिया, खत्म। ओम शांति।